विधं बहुगुणं अन्नमादाय भाजनैः अभिशश्रुः प्रियं सर्वः समुद्रमिव निम्नगः निषिध्यमानः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः भगवतुत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयः यमुनोपवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपैः ददृशुः साग्रजं स्त्रियः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवरः धातु प्रवालनटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम् प्रायः श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरैः यस्मिन् निमग्नमनसः तमथाक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् प्राज्ञं यथाभिमतयो बिजहुर्नरेन्द्र तास्तथा त्यक्तसर्वाशः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया विज्ञायाखिलदृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः श्रीभगवान् उवाच स्वागतं वो महाभागः आश्यतां करवामकिं जन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहैतुक्य व्यवहिता भक्तिमात्मप्रिये यथा प्राणबुद्धिमनः स्वात्मा दारापत्यधनादयः यत्सम्पर्कात् प्रियायासाम् ततः को न परः प्रियः तद्यातदेव जजनम् पतयो वो द्विजातयः स्वशत्रुं पारयिष्यन्ति जुष्माभिः गृहमेधिनः
श्रुत्वा चतुर्विधं बहुगुणं
चतुर्विधं
अभिपत्रोपिनं
सर्वा
Bye.
माता जी और कोई आत्मा अंग्रेज लोग शरीर बोलते हैं क्योंकि देह के अलावा वो कुछ जानते नहीं, ये नहीं बॉडी कर ये नहीं आत्मा अब कोई आत्मा नहीं बोलेगा श्रुत्वा सुनकर ठीक है। मैं यहाँ प्रश्न कर रहा हूँ कुछ बच्चों से, खड़ा हो जाओ अमन। ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण आए हैं, किससे सुना?
वो बाल गोपों से सुना।
ठीक है।
कृष्णा भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पर।
हाँ ठीक है, मराठी टोन में बोल रहे हैं बम्बैया राज तो वहां द्विज पत्नियों से गोपो ने जाकर क्या कहा था, अब बताओ अपनी ताई। गोप लोग ब्राह्मण की स्त्रियों से क्या जाकर कहे?
कृष्ण ने यहाँ पर आया
है। अच्छा ठीक है, और कृष्ण को भूख लगी है ये सब नहीं कहे? क्या कृष्ण ने कहा था कि जाकर कहना कि हमको भूख लगी है तो फिर बच्चे क्यों कहे हैं? वे क्यों कहे कि कृष्ण भूखे हैं? क्योंकि उनको विश्वास हो रहा था कि ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं तो वे ऐसे हैं तो ये थोड़े उदार हो जाएंगे, इसलिए भूख की बात कह दी। श्रुत्वा सुनकर अच्युतम, जो उनके हृदय से कभी दूर नहीं होते थे, च्युत नहीं होते थे, जैसे श्री कृष्ण को उपनिकट आयातम आया हुआ सुनकर, यहां ये लगाएंगे क्रिया को, नित्यम निरंतर तद दर्शन, उनके दर्शन के लिए, श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक रहती थी, तत्कथा और श्री कृष्ण की कथाओं से अक्षिप्त मनसः हृत मन वाली थी, उनके मन को श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही छीन लिया था, हर लिया था। बभूवुः हो गई जाता उत्पन्न संभ्रमः महोत्सव, उनके हृदय में परमानंद छा गया। चतुर्विधाम, चार प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इसी में पेय भी आ गया, किसी न किसी में पेय आ जाएगा। बहुगुणम, बहुत गुण से युक्त, स्वादिष्ट और सुगंधित और कोमल, अन्नम भोजन, आदाय लेकर, भाजन ही बर्तनों में अभी शश्रु बहुत तेज गति से चली, प्रियं अपने प्रियतम के पास, सर्वः सभी द्विज पत्नियां, समुद्रम इव जैसे समुद्र के तरफ चलती हैं, निम्नगः नदियां, निषिध्यमानः ऊपर कहीं श्लोक से युक्त है, यदि इस तरह से लोगों ने रोका फिर भी निषिध्यमानः प्रतिबंधित होने पर भी, रोके जाने पर भी, पति भी पतियों द्वारा, पितृभिः पिताओं द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों द्वारा, बंधुभिः और भी अपने संबंधियों द्वारा, अथवा पितृ भी नहीं है पाठ भेद है, भ्रातृ बंधु भी सुतई, भाइयों द्वारा, बंधुओं द्वारा और पुत्रों द्वारा, भगवती श्री भगवान में उत्तम श्लोके, जिनका जस उत्तम है, श्रेष्ठ कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण में, दीर्घ काल से श्रुता सुनकर, भगवान के गुणों को दीर्घ काल से सुनकर, धृताशय उन्होंने अपने आशय को, अंतःकरण को अर्थात मन को उत्तम श्लोक में ही धर दिया था। अतः वे रोकने पर भी नहीं रुकी। पूर्व में वह इसका अर्थ है कि पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को सुन करके, कथा का अर्थ है भगवान के सौंदर्य, उनका रूप, उनका तेज और उनकी विविध प्रेममयी लीलाएं, ये सब सुन करके यज्ञ पत्नियों का मन पूर्णतः श्री कृष्ण में आविष्ट हो गया था, श्री कृष्ण ने हर लिया था। तत्कथा क्षिप्त मनस, ये जो मन अन्य लोगों का संसार में भटका हुआ है, यह मन भगवान में कैसे आएगा, तो उनके कथाओं से आएगा। उनके विषय में जब व्यक्ति सुनता है तो मन चारों तरफ से हट करके लग जाता है। ये द्विज पत्नियां जो भगवान को देखी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे पौर्णमासी के मुख से या गर्गाचार्य आदि के मुख से सुन करके, जैसे तैसे श्री कृष्ण में इनका मन बिल्कुल निमग्न हो गया था, आसक्त हो गया था। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कथाओं ने उनके मन को छीन लिया था, आक्षिप्त छीन लेना, आकर्षित करना। तो कथा द्वारा इनका मन भगवान में लग गया था, ये न कह करके कहते हैं कथाओं के द्वारा इनका मन श्री कृष्ण ने छीन लिया था, आक्षिप्त। अत्यधिक मन भगवान में लगा था, इसलिए इसको आक्षिप्त कहा जाता है। जैसे जबरदस्ती अपने सौंदर्य से या अपने गुणों से श्री कृष्ण ने इनके चित्त को अपने वश में कर लिया था, छीन लिया था। देखिए जरा विचार कीजिए, इस संसार में दूसरे का मन विक्षिप्त रहता है विषयों में, संसार में, और इनका मन, द्विज पत्नियों का मन भगवान में आक्षिप्त हो गया है, लग गया है पूरा पूरा। तस्य श्री कृष्णस्य कथया लीलादि रूपया वार्तया, इसका मतलब आक्षिप्तानि आहृतानि मनांसि जासमता है, किंवा तस्य कृष्णस्य कथया, यह कथा से तत्पर्य है, इसलिए सनातन गोस्वामी पदार्थ करते हैं। पहले से जो भगवान कृष्ण की कथाओं को ये सुन रही थी, उससे उनका मन श्री कृष्ण में पूर्णतः लग चुका था, श्री कृष्ण ने उनके चित्त को अपने वश में कर लिया था। अथवा श्री कृष्ण की कथा से इस समय जो गोपों ने कथा की कि श्री कृष्ण भूखे हैं, यहाँ आए हैं, इसको सुन करके आक्षिप्तानी मनांसी, अरे पामर मनः कथम प्रियतमस्य बुभुक्षा श्रवणे नापि न मूर्छा तो जागरसि धिक्तानिति एवं तिरस्कृतानि स्व मनांसी जाधिता। अथवा तत्कथा क्षिप्त मन सह कार्थ, इस समय भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह सुन करके कि भूखे हैं, तब वे अपने मन को मन पर आक्षेप करने लगे। अभी श्री कृष्ण का चिंतन करने में जो मन आसक्त है, श्री कृष्ण के रूप गुण आदि को देख रहा है और आनंद मूर्छा हो रहे थे, कृष्ण का नाम सुन करके आनंद मूर्छा हो रहे थे, उनको बेसुध हो रहे थे, तो वे अपने मन को धिक्कारती हैं, प्रियतम यहां आए हैं और वे भूखे भी हैं, यह सुन करके भी तुम मूर्छा से नहीं जगते हो, अब तुम उनके लिए भोजन जुटा करके उनको खिलाना चाहिए, ये काम करना है, अरे मन तुम इस तरह से मूर्छित हो रहे, अभी तो जगो, मन की आलोचना कर रहे, आक्षेप कर रही मन पर। ये चक्रवर्ती पादी अर्थ के धिक त्वामिति, तुमको धिक्कार है, एवं तिरस्कृतानि स्व स्व मनांसि जाभिता, अतएव नित्यं तद्दर्शनत्सु कहा, जो नित्य ही कृष्ण को देखने के लिए तरसती रहती थी, जीवन में बस इतना ही मनोरथ था कि कब प्रियतम श्याम सुंदर को देखेंगी और उनकी दासी बनकर के सदा उनके साथ रह जाएंगी, यही मनोरथ। नित्यम तद दर्शन हो चुका, दर्शन अर्थात उनसे भेंट करना, उनकी सेवा करना, इन्हीं इसी की लालसा में रहती थी। पहले तो देखने के लिए तड़प रही थी और जब गोपो ने कहा कि यहां आ गए हैं, उस पर कैमूत्य न्याय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो रात दिन कृष्ण को देखने के लिए तरसती थी, व्याकुल थी, और उनको ये संवाद मिला कि श्याम सुंदर यहां आए हैं, तब तो द्विज पत्नियां तदा अचितम उपायतम श्रुत्वा जात संभ्रमा बभूव, यह सुनते ही जात संभ्रमा, सम्यक भ्रम, भ्रम का अर्थ है घबराहट, प्रियतम की क्या सेवा करें, कैसे करें, ये प्रसाद ले चलना है, ये करना है, वो करना है, ये बिहवल हो गई और नख से सिख तक शरीर में मन में उत्सव छा गया, परमानंद छा गया है सुन करके कि वे आए हैं। तदा अचितम उपायातम श्रुत्वा जात संभ्रमा बभूव, जातोत्सव बभूव, विशेषतश्च तत्कथया तद्बुभुक्षा वार्तया आक्षिप्त मनस, तत्कथाक्षिप्त मनस्त्वा तद्दर्शनोत्सुका, उनके दर्शन के लिए नित्य उत्कंठित रहती थी, अब उनको देखने के लिए वे चल दी, ये भाव है। और जात संभ्रमा से तात्पर्य ये है कि प्रियतम श्याम सुंदर और उनके मित्रों के लिए ये भोजन जुटाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, कुछ तो बना हुआ भोजन, बना हुआ जैसे मिष्ठान, मिठाइयाँ आदि यज्ञ में बनी ही हुई थी, बहुत शुद्धि से और बहुत श्रेष्ठ कोटि की मिठाइयाँ बनी थी, वहाँ अब उस समय के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना कहना एक अपराध हो जाएगा कि उस समय कोई अशुद्ध घी होता ही नहीं था तो सब कुछ फर्स्ट क्लास का आइटम था और पहले से ही जोग माया ने व्यवस्था की थी भगवान की शक्ति ने कि उस दिन स्पेशल बना हुआ था खूब अच्छा, तो ये सब जुटाने लगी, रखने लगी और अचार वगैरह जिसको चुस से कहते हैं, चुस चुस करके खाना, और लेह्य, लेह्य में है अनेक प्रकार की चटनी, चटनी कुछ तो बना करके रखी गई थी और कुछ बनाने लगी कि ये करो ये करो, इसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संभ्रमा, तुरंत भ्रम में, भ्रम का अर्थ है भ्रमण, इधर करो, इधर जाओ, ये करो, ये करो सखी, इतने चलो, ये ले चलो, ये करो करो करो। उनको कोई भी इसका ध्यान तो पहले से ही नहीं था कि हम ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और हमको यज्ञ में हेल्प करना है, ये करना है, वो करना है। वो तो किसी तरह से कर रही थी शरीर से, मन तो पूरा कृष्ण में लगा था। तब कृष्ण के आगमन का समाचार सुन करके वे जातोत्सवा हो गई, सामान जुटाने लगी। सामान जुटाने में, रखने में, इस बर्तन में रखना, इसमें श्याम सुंदर खाएंगे, इसमें ले चलने, इसमें स्टॉक का बर्तन, पाक पात्र, इसलिए भाजनही का अर्थ है बर्तनों में। तो कुछ बर्तन थे जिसमें स्टॉक रखा गया था, पाक पात्र ही का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वहां बहुत बर्तन का अभाव था जिसमें बनाई है और नीचे राख लगी हुई उसी को लेकर के चल रहे, ऐसा नहीं, दूसरे बर्तन में रख करके चल। ये अर्थ अरे जिसमें बना है उसी कड़ाई को, उसी को टांग टांग करके पहुंचाए। बर्तनों में लेकर के चलें, और कुछ बर्तन लेकर के चली खिलाने के लिए, क्योंकि गाय चराते हुए आए हैं और कई उनके मित्र हैं, तो वो सब थाली लोटा गिलास लेकर के तो आए नहीं होंगे, तो बर्तन भी लेकर के चले। वहां कोई बर्तन की कमी नहीं थी, बहुत संपन्न ब्राह्मण थे। अन्नम आदाय भाजने, अन्नम भोजनम, कथम भूतम अन्नम, चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम, चार प्रकार का अन्न, अन्न माने भोजन, भोजन को अन्न कहते ही हैं। तो ऐसे उसमें है ना, अन्नम चराणाम अचरहा भागवत में आया है, जो चर हैं जैसे गाय भैंस आदि, इनका भोजन है अचर, ये घास आदि जो एक जगह चलते नहीं, घूमते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, अचर। तो चर के अन्न अचर हैं, तो अन्न का अर्थ है भोजन, यहां भी अन्न का अर्थ है भोजन। भोजन की विशेषता बता रहे हैं, एक तो वैरायटी बहुत है, मुख्य चार किस्म के हैं, लेकिन एक एक किस्म में, एक एक प्रकार में कई कई आइटम है। और भगवान के लिए प्रसिद्ध बात है कि ये 56 भोग खाते हैं, किसी मनुष्य के बारे में नहीं सुना गया कि वो 56 भोग खाता होगा। 56 भोग क्या, एक दो भोग खा करके ही अस्पताल पहुंच जाएगा, 56 भोग क्या खाएगा। किसी को डायबिटीज है, तो किसी को ब्लड प्रेशर, तो किसी को कुछ है, एक सूखी रोटी वोटी कुछ खा ले यही काफी है, लेकिन भगवान 56 भोग खाते। उनका शरीर तो स्पिरिचुअल है, दिव्य है, उसमें कोई रोग दुख तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो चतुर्विधम अन्नम का अर्थ चार प्रकार के अन्न। चार प्रकार के अन्न में ये कहा जा रहा है, एक है भक्ष्य और दूसरा है भोज्य और तीसरा लेह्य, चौथा चोष्य। और लेह्य में ही ऐसे पेय भी रख दिए जाते हैं, लेकिन पेय कोई भोजन नहीं है, इसीलिए उसको अलग से नहीं कहा जाता है। पेय का अर्थ पीने योग्य। भक्ष्य कहते हैं जिसको चबा चबा करके खाया जाता है, जैसे पूरी, इसको बहुत चबाया जाता है, रोटी पूरी और भी चीज। और भोज्य कहते हैं जिसको बहुत नहीं चबाना पड़ता है, कम चबाना पड़ता है, जैसे हलवा, पेय भी नहीं है लेकिन भक्ष भी नहीं है, तो बहुत नहीं चबाना पड़ता है, या भात भात को भी बहुत नहीं चबाना पड़ता। और कुछ होता है लेह, लेहन का अर्थ है चाटना, चाटते इस लोग से चटनी कहते हैं चाट चाट कर खाते अचार आदि भी उसी में आ जाते हैं, थोड़ा खाया जाता है। एक बार वृंदावन में प्रसाद चल रहा था गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल के बाद, तो एक विदेशी भक्त को दे दिया किसी ने अचार परोसने के लिए, तो वो नहीं जानता था कि अचार एक एक या थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, वो कलछुल से काढ़ काढ़ करके तरकारी की तरह दे किसी ने देखा उसको पकड़ा, ये क्या कर रहे हो, तो देखा था सब्जी परसते हुए, तो वो भी अचार को जानता नहीं था कि ऐसे खाया जाता है, तो सब्जी की तरह परसने लगा, कुछ पतल पर दे चुका था, उसके बाद छीन करके दूसरा भक्त परसने लगा थोड़ा थोड़ा दे रहा। तो चटनी लेहन करना चाहिए, लेहन थोड़ा थोड़ा खाना बीच बीच में, और चोस्य, चोस्य का अर्थ चुस चुस करके खाना, चाट चाट करके खाना एक अलग चीज है, और चुस चुस करके खाना, जैसे आम, आम चुस करके खाते हैं, ये लोग जो काट करके खाते हैं आम, वो नहीं जानते हैं कि इसको कैसे खाया जाता है। आम को पूरा गलगला करके उंगुलियों से और ऐसे चुस चुस करके खाया जाता है, तो चोस से कहते हैं। और भी कुछ प्रकार हैं, मैं कई प्रकार के, जैसे पेय, पेय का अर्थ पीना, हमें चबाना नहीं पड़ता है केवल पीना पड़ता है, जैसे दही, दही को किसी चीज से चम्मच से घोर करके अंगुली से, पानी नहीं डालते हैं, अपने आप ही वो ढीला हो जाता है, तो उसमें इलायची कर्पूर चीनी आदि मिला करके, और कुछ लोग तो घी भी डाल करके उसमें पीते हैं, दही में घी डाल, मधु और घी डाल। इस प्रकार से द्विज पत्नियों ने चार प्रकार के भोजन विविध पात्रों में लेकर के चली। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके चलने को, उनके चलने का वर्णन कर रहे हैं, कैसे चली, कितना वेग से चली भगवान के पास, जैसे निम्नगाह गंगा आदि नदियां समुद्र के तरफ चलती हैं, समुद्र के तरफ, हिमालय से निकल करके गंगा जी जितना वेग से चलती हैं, हरिद्वार तक आप लोगों ने देखा, हरि बोल, उधर बैठकर इधर देखिए, आपका चेहरा सब लोग देख रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे बैठ गए कि साफ दिखाई पड़ रहा है सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो महाराज परीक्षित ऐसे नहीं कर रहे थे कि अब वो झपकी ले रहे हो इस तरह से कथा सुनने का ये ढंग नहीं होता है, जब अपने मानस नेत्रों से देखा जाता है कि अच्छा ऐसे चल रही है, ऐसे बर्तन उठाई हैं, ऐसे और चल रहे, वो भी बर्तन लेकर के, भारी वजन लेकर के, और नदी की तरफ वेग से चली। और उनके लोगों ने प्रतिबंध डाला, और ऐसा नहीं था कि कोई रोका नहीं, कोई बाधा नहीं आई और वे चल दी वेग से, बाधाएं आई, उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि रोकने वालों ने रोका, रुकने वाले मतलब अपने स्वजन, स्वजन में सबसे पहले पतियों का नाम दे रहे हैं। एक एक द्विजपत्नी को कई कई लोग रोक रहे थे, पहले तो पति रोके। पति का सहज अधिकार है और बिना पति के अनुमति के इतना सामान बना करके और ले करके बस चल दे तो रुकेगा ही, ये क्या हो गया। पहले से इन्होंने देखा था, वो गोप सखा आए थे, मांगे थे, लोग नहीं दिए, तो नहीं दिए तो इतनी ही बात नहीं थी कि नहीं दिए, इनकी दुर्भावना थी कि इधर क्यों आए, इनको क्या मांगने खाने का अधिकार है, इधर हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं देवताओं के, इन्हीं को खिलाने के लिए, ये दुर्भावना थी। और तब तक घर का सारा सामान लेकर के अपनी पत्नी चल दी वहीं खिलाने के लिए, जो क्यों नहीं रोकेंगे, बिल्कुल सामने आ गए। और देखिए सामान हाथ में है, किसी किसी के मस्तक पर सामान था, वो बड़े बर्तन में, उसमें कई कई छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे भोजन से भरा हुआ, वो लेकर के चल रही है, कोई हाथ में चल रही है, कोई लटका करके चल रही है, बाकेट उठाए बाल्टी उसमें लेकर जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। सभी ने मिल करके इस घर का कुछ सामान, उस घर का कुछ सामान मिल करके बांट करके चली, तुरंत चली जल्दी जल्दी। तो इसके बाद सबके पति आ गए, सामने खड़े हो गए, नहीं तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तो बोलती नहीं है, बस चलती ही जा रही है, जैसे नदी बहती है और उस पर कोई प्रतिबंध डाले तो बोलती नहीं है, परंतु जरूर जब जल का उच्छलन होता है तो कुछ आवाज होती है प्रतिरोध करने पर। तो इस तरह से द्विजपत्नियां कह रहे मुझे जाना है, जाना है, मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकती हूं, नहीं तुम कभी नहीं जा सकती हो। वो लोग रुकते हैं, पहले तो वचन से धर्म का उपदेश करते हैं, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, तुम मेरी हो, तुम नहीं जा सकती हो कृष्ण के पास, नहीं जा सकती हो। वो कहती है मुझे जाना है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, मैं जाऊंगी जाऊंगी। और तब बांह पकड़ते हैं कई लोग, जो संबंध बताया गया है कि नहीं तुम मत जाओ, पहले तो समझाते हैं, धर्म का भय दिखाते हैं, लोक लज्जा आदि दिखाते हैं कि हमारा नाम डूब जाएगा, लोक में लोग बदनाम करेंगे कि अमुक की पत्नी ऐसे हो गई, ये हो गई, वो चली गई दूसरे के पास। और ऐसा नहीं था कि केवल भोजन लेकर के जा रही हैं, वो समझ गए, पहले से ही ढंग देखते थे, श्री कृष्ण की वार्ता करते समय या श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहती थी तो कभी कभी कृष्ण नाम सुन करके पुलक हो जाता था, इनको आंखों में आंसू आ जाता था, पहले से लोग देखे थे कि कृष्ण में लोग इतना आसक्त हैं। अब इस समय जब वो जाने लगी सब कुछ छोड़ करके तो समझ गए कि ये तो पूरा जा रही है, तो नहीं जा सकती हो। कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि ये जो भी सामान है हम अभी भिजवा देते हैं कृष्ण के पास, लेकिन तुम मत जाओ, नहीं जाना है हमें। इस तरह से बांह झटक करके छुड़ा करके, देखिए भगवान के प्रेम में इतना बल, इतने बलवान पुरुष लगे थे पकड़ने में, लेकिन निषिद्ध माना अपि अभिशस्त्र प्रियम अभिशस्त्र, प्रियतम श्याम सुंदर के पास चली ही गई अभिशस्त्र, सरक कर गया था, तेज गति से जा रही थी, जो रुकने वाले रोक रहे हैं तो सबसे पहले पति लोग रोक रहे हैं। इस संसार में किसी स्त्री पर सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अधिकार है वो पति का है, और वास्तव में पत्नी को पति के अनुसार ही चलना चाहिए, परंतु यदि पति भगवान के भजन में बाधा डालने लगे तब क्या किया जाए, ये प्रश्न उठा करता है क्या करना चाहिए, क्या पति के कहने से उसे जप नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि किसी किसी विषय में पति का अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। अगर वो सहाय करे, सहायता करे तो ठीक है, ये तो कम से कम उसे प्रतिरोध नहीं डालना चाहिए। ये तो उस पति का भाग्य है कि उसकी पत्नी भगवान का भक्त हो, और पति यही मानता है ना कि यह मेरी पत्नी है, मेरी सेवा करना इसका धर्म है, ये है वो है। कितने दिन का पति है बताइए? विवाह के पहले वो जानता भी नहीं था कि कौन लड़की मेरी पत्नी बनेगी, कुछ पता नहीं था। और विवाह के बाद कितने दिन का संबंध है, अंततः फिर संग छूट जाएगा, शरीर छूट जाता है और दोनों शरीर में जो आत्माएं हैं वे अलग अलग जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। तो ये टेम्पररी संबंध है। इस भावना में रहना कि यह मेरी पत्नी है, या पत्नी यह सोचे कि यह मेरा पति है, इसी भावना में जीवन बिता दे, और दोनों इस अज्ञान में रह करके केवल परिवार धन देह आदि संभालने में रहें, और जीवन के परम साथी परम प्रिय श्री कृष्ण को दोनों भूले रहें, ये तो बहुत बड़ा घाटा है। तो पति लोग रोक रहे थे ये दावा करके कि तुम हमारी हो, हमारी हो, हमारी हो, कोई किसी का नहीं है, सब कृष्ण के हैं। इमीडिएट अधिकार सब पर श्री कृष्ण का है। गीता में खुलम खुला कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है जीव और किसी का अंश नहीं है। अतः श्री कृष्ण ही कह सकते हैं किसी को कि ये मेरा भाई है, मेरा प्रिय है, मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, मेरा ये है, मेरा ये है। केवल उनको कहने का अधिकार है। और ये तो दो दिन का खेल है, बस रच दिया गया है और बांध दिया गया माया में कि ये तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारे कोई किसी का नहीं है वास्तव में, सत्य देखा जाए तो। तो आज जब अपने असली पति भगवान के पास द्विज पत्नियां जा रही हैं, तो इसमें प्रतिरोध डाला जा रहा है, लेकिन वो प्रतिरोध काम नहीं किया। निषिद्ध माना अभिशस्त्र, जैसे नदियां पहाड़ से निकल करके समुद्र की ओर भागती हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता है, इस तरह से वे श्री कृष्ण के पास गई। पति लोग रोक रहे थे, पति के रोकने पर भी जब वो नहीं रुकी, चल ही दे, तो उसके पिता को भय हुआ, उस लड़की के पिता को भय हुआ कि ये आज ऐसे जा रही है तो इसका पति इसको त्याग सकता है, फिर नहीं रखेगा। क्योंकि स्त्री का जीवन ऐसा है पराधीन जीवन कि उसे पति के अधीन या किसी के आश्रय में रहना ही चाहिए, बिना आश्रय के नहीं रहती है। तो उनको शंका हुई कि ये पति त्याग देगा, तो इसलिए वे समझाने लगे। जब पिता समझाने लगे, इसमें पाठ भेद पितृ भी लिखा गया, पितृ भी पिताओं के द्वारा रोकी जा रही, डायरेक्ट अपने पिता द्वारा या ससुर द्वारा रुकी जा रही, बेटी कहाँ जा रही हो, मत जाओ मत जाओ, देखो अपना कुल खानदान देखो, लोक में हम पर बहुत कलंक आएगा कि इसकी बेटी ऐसे हो गई, ये हो गई, तुम मत जाओ, तुम रुको रुको रुको। लेकिन नहीं रुकी। तब भाइयों ने रोकना चालू किया, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी और से कर रहे हैं, भाई अपने बहन के कीर्ति के लिए स्नेह बस इसका नाम बदनाम न हो, वो रोकने लगे, फिर भी नहीं रुकी। बंधु भी और भी परिवार के लोग या संबंधी जिनके साथ विवाह के संबंध द्वारा और लोगों से संबंध जुड़ता है, या जन्म का संबंध, विवाह का संबंध और जन्म का संबंध, जो अपने इस तरह के संबंधी होते हैं उनको बंधु कहते हैं। तो बंधु लोग आकर के रोकने लगे, और अंत में पाठ भेद के अनुसार सुतई पुत्र रोकने लगे। यह पुत्र से तत्पर जो है उन द्विज पत्नियों के, और जो कोई भतीजा लगता था ऐसे, उसके लिए सुत शब्द का प्रयोग किया गया, अपने अपने खास पुत्र नहीं, क्योंकि भगवान की प्रियाए हैं और नित्य ही किशोरी हैं, तो उनके छोटे छोटे संबंध में भतीजे आदि रोकने लगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, माँ मत जाओ या चाची मत जाओ, इस तरह से कहने लगे, कई तरह की बातें कहने लगे। सब वास्तव में दुखी थे कि इस तरह से क्या हो गया, ये क्यों जा रही हैं, परंतु भगवत संबंध बलवती बलवान सिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण के साथ जो जीव का संबंध है उसके आगे ये लोक का संबंध है यह कुछ भी नहीं है। अगर वह लोहे की मजबूत रस्सी है तो ये सब कपास के हल्के धागे के समान है, इनके टूटते देर नहीं लगती। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सेवरी से कहा था कि ये जो संबंध है, सबका ममता ताग बटोरी ममपद मन ही बांध बटो, उनको ताग कहा है। तागा समझते हैं, बहुत छोटे से सूत रस्सी को कहा जाता है तागा। ये इन सबको बटोर करके सारा जो नाता है हमारे चरणों में डालना चाहिए। ममपद मन ही बांध बरडोरी, सबका ममता ताग बटोरी ममपद मन ही बांध बरडोरी। तो श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है जीव का वो बहुत मजबूत है, जन्म जन्म तक वो रहेगा। भले जीव उसको याद नहीं करता है, वो थोड़े थोड़े धागाओं में बंध जाता है। देखा है ना, धागा वास्तव में विवाह आदि में धागा ही बांधा जाता है, और वो समझता है कि बस जीवन भर के लिए भारी बंधन हो गया। ये ठीक है व्यवहार निभावे, लेकिन मन से मानना चाहिए कि ये धागा क्या हल्का है, कुछ भी नहीं, टूट जाएगा, ये है भी नहीं, केवल मान्यता भर है। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भाव मान्यता नहीं है, वो स्वरूप है जीव का। तमेव माता च पिता तमेव, वही माँ है वही पिता है वही भाई है वही बंधु है पति है, सब कुछ वही है। और वही प्रभु जब आज निकट आ गए हैं, और एक प्रकार से वो निमंत्रण भी दिए, भोजन मांगना वास्तव में निमंत्रण देना था, इन्विटेशन देना था भगवान के द्वारा। ऐसी बात नहीं थी कि भगवान भूखे हैं और कोई उनको बहुत जरूरत थी भोजन की। ऐसे प्रभु एक प्रकार से जब बुला रहे हैं तो कैसे वे रुक सकती थी। प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण में इतनी आसक्ति उनकी कैसे हो गई थी, इतना प्रेम कैसे हो गया था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशय। भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण में उनका आशय अंतःकरण या चित्त पूर्ण समर्पित था, पूर्ण समर्पित था। स्वप्न में भी कोई दूसरी चिंता वो नहीं करती थी, ये परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कभी नहीं। श्री कृष्ण में ही चित्त मग्न था। ऐसा क्यों हुआ, कैसे श्री कृष्ण में उनका चित्त इतना निमग्न हो गया? दीर्घ श्रुत, उन द्विज पत्नियों ने बहुत काल तक बारंबार भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण किया था। श्री कृष्ण का श्रवण किया था मतलब कितना सुंदर है, उनकी सुंदरता का बखान कई बार उन लोगों ने सुना था, उनके ऐश्वर्य का, उनके तेज का, उनकी करुणा का, ये बहुत कृपालु है और जीव के नित्य संगी हैं, उन प्रभु का ही अंश सब जीव है, इन सब सारी बातों को भी उन्होंने सुना था। तो अपने भाव के अनुसार, चूंकि वे स्त्री हैं ज्योति हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में माना, ये भाव है, बहुत काल तक सुनती रही। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति चाहता है हृदय से कि श्री कृष्ण में हमारा मन आसक्त हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो बारंबार कृष्ण के विषय में सुने, बारंबार सुने, पढ़े श्रीमद् भागवतम। और सुना जाता है, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, कि द्विज पत्नियों ने भगवान को इस तरह से पसंद किया या समर्पण किया, उन्हीं में चित उनका लगा था। ये बात सुन करके जरूर उत्साह मिलता है कि ओहो, हमें भी भगवान में इस तरह से चित रखना चाहिए। तो इन भक्तों की जब कथाएं सुनते हैं कृष्ण के साथ, और विशेष करके कृष्ण के गुणों का जब श्रवण करते हैं कि अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और उनको जो जिस भाव से भजता है उसी भाव से उसको स्वीकार करते हैं, उनमें पूर्ण क्षमता है, वे दया के समुद्र है, सौंदर्य मूर्तिमान है, और उनका ज्ञान अनंत है, सब गुण विभूषित हैं, सभी गुणों से युक्त है, तो मन उनमें लग ही जाएगा। इसके लिए दीर्घ श्रवण करने की आवश्यकता है, दीर्घ श्रुत। कभी कभी आदमी सोचता है, मान लीजिए दो दिन कथा सुन लिया, एक दिन सुन लिया, तो बात तो बहुत हो गया है ना। कभी कभी आदमी सोचता है तो बहुत हो गया, किसी किसी के लिए एक दिन ही बहुत हो गया, और किसी किसी दिन किसी किसी के लिए सात दिन तो सात युग ही सुन लिया, ऐसा भाव होता है। ऐसे गृहस्थों के जीवन में आज के युग में वास्तव में इतनी व्यस्तता हो गई है कि उसको फुर्सत नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, अभी अपने जीवन में ही हम लोग याद करते हैं, कहीं कहीं कथा होती थी यज्ञ में कहीं, तो लोग जाकर प्रवचन सुनते थे, शाम को जा करके एक बजे दो बजे रात तक सुनते थे। हमने देखा है जैसे चिनारी में यज्ञ होता था, तो हमारे गांव से कुदरा से भी लोग जा करके और सुनते थे। कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, उस समय कोई इतनी सवारियां सुलभ नहीं थी, पैदल जाना, और वहां पर कोई खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। स्वयं खा करके जाना, आधी रात तक, आधी रात से भी ज्यादा कथा सुनना, यज्ञ का दर्शन करना, फिर आते थे। आजकल सवारियां हैं, सब हैं, लेकिन आदमी को अपने घर छोड़ने की फुर्सत ही नहीं है, क्यों ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। जबकि और व्यस्तता भी बढ़ गई, फालतू चीज देखना, टीवी देखना, ये करना, वो करना, और बिना मतलब के अपने घर के पास जो बाजार है वहां शाम को घूम आना नियम से, ये सब, ये भी एक काम ही बढ़ गया है, लोफराई। ये भी एक काम बढ़ गया है घूमना। और एक बार वो सूरतदास वर्णन कर रहे थे, महाराज जी शिव जी के दर्शन के लिए कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, तो दर्शन नहीं करते हैं, शिव जी तो अपन मंदिर में रहते ही हैं, वो गांजा पीने का टाइम होता है उस टाइम पर जरूर आ जाते हैं, टाइम से गांजा क्लास अटेंड करते हैं। तो बंगाल में और उड़ीसा में लोग पानी पीना या धुआं पीना को पीना नहीं कहते हैं, खाना कहते हैं। एक दिन मैं ऐसे बैठा था जोगिया वीर बाबा के पास, तो ये नटवर दास कहते हैं, महाराज मंदिर के पास एक साधु गांजा खा रहे थे। हम एक बार तो भ्रम में पड़ गए थे, चबा रहे थे क्या, खैनी भाई खैनी के जगह पर चबा रहे थे, पूछा खा रहे थे, तो हाँ क्या कर रहे थे, धुआं खा रहे थे ऐसे चिल्ला। तो इस तरह से यह भी एक व्यस्तता है, कितनी भी व्यस्तता हो लेकिन गांजा पीने वाला अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच ही जाता है ना। ये देखिए उसका रूटीन पालन, इतनी व्यस्तता बढ़ा लेना अपने आप, कहा गया भागवत में कि व्यक्ति रेशम के कीड़े की तरह ऐसा बंधन चारों तरफ कर लेता है कि निकलने का दरवाजा भी नहीं छोड़ता। रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ घर बनाता है और घर बनाते बनाते पूरा बंद कर देता है, न खिड़की न दरवाजा कुछ नहीं निकाल छोड़ता है। और जब बंद हो जाता है तो होता है मैं बंद हो गया, ये बंद हो गया, अब निकलने का कोई उपाय ही नहीं है उसके पास, और अंत में मारा जाता है। रेशम पहनने वाले लोग उस कीड़े को मार नहीं देते। तो इस तरह से मनुष्य सोचता कहाँ हमको फुर्सत है, हम जाल में है, लेकिन जाल सारा बनाया कौन, स्वयं चारों तरफ बनाते और इतना बना लिए कि अब भागवत पढ़ने की फुर्सत नहीं, एक माला जप करने की फुर्सत नहीं आदमी को, दूसरे काम के लिए फुर्सत है। तो कोई चाहता है कि उसका मन भगवान में पूरा पूरा रम जाए, इसके लिए ये कहीं उपाय है, वो है भगवान के विषय में सुनना। और यह बात जरूर है कि कैसा सुने, वक्ता कैसा होना चाहिए, इसके भी कुछ लक्षण हैं शास्त्रों में दिए गए हैं, उसके अनुसार मिला लेना चाहिए, परंतु सुनना अपना कर्तव्य है। इन द्विज पत्नियों का मन भगवान में दीर्घ काल तक श्रवण से आसक्त हुआ था, दीर्घ श्रुत धीरता से। किसमें उत्तम श्लोक है, श्री कृष्ण का एक नाम उत्तम श्लोक है, उत्तम ही श्लोक कहते इति उत्तम श्लोक है, जो उत्तम लोगों के द्वारा प्रशंसित होते हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, महर्षि वशिष्ठ जी, सब जितने भी उत्तम लोग हैं सबसे श्रेष्ठ, वे भगवान कृष्ण की बखान करते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। अथवा उत्तम, तम का अर्थ है अज्ञान, माया, तमोगुण, जिनका जस सुनने से, जिनकी कथा सुनने से व्यक्ति तमोगुण को पार कर जाता है, इस प्रकृति के बंधन से पार हो जाता है, अज्ञान से पार हो जाता है, उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। केवल सुनने से, पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम बोलने से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं, या वेदों के उत्तम छंदों में, उत्तम श्लोकों में उनकी कीर्ति गाई गई है। श्री कृष्ण के विषय में ही सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। तो ऐसे उत्तम श्लोक के विषय में ये यज्ञ पत्नियां बहुत काल तक सुनी थी। जो जीवन में महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो वेद कहता है असकृत उपदेशात, असकृत आवृत्ति, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए असकृत, निरंतर 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 आवृत्ति आवृत्ति, जैसे महामंत्र है। तो महामंत्र ऐसा मंत्र है जिसको केवल जपने से व्यक्ति भगवान को पा सकता है, जीवन में सारा दोष दूर होगा। जैसे रात में कुछ भक्त लोग गा रहे थे, यही नाम दुनिया का दुख मिटाया है, आ रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसकी आवृत्ति होनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में भगवान वेदव्यास देव ने लिखा है असकृत आवृत्ति करने को, निरंतर बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, कहीं भी खेत में, खलिहान में, रास्ते में बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो दीर्घ काल तक अभ्यास का कुछ और ही फल होता है। तो इन द्विज पत्नियों ने भगवान के विषय में बहुत बहुत सुना था, बार बार सुना था, दीर्घ श्रुत धृताशय दीर्घेण कालेन, यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। दीर्घम बहु कालम श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो जाभी ता सर्वा द्विजपत्न्य। ये सब चली विविध प्रकार के प्रसाद लेकर भगवान के पास आ करके, जब इतने वेग से आई और आ करके उन्होंने देखा, उस समय भगवान श्री कृष्ण जमुना के उपवन में थे। जमुना का उपवन का यहाँ अर्थ है जमुना के किनारे के वन में थे। जो भक्त वृंदावन गए हैं और जगपत्नियों के स्थान को देखे हैं अक्रूर घाट आदि, वे समझ जाएंगे। तो वो सारा क्षेत्र अशोक वन था, अशोक के वृक्ष उगे हुए थे नए नए जमुना के बिल्कुल किनारे, उस वन में वे थे। श्री भगवान को ये पता था कि विप्र पत्नियां आएंगी और वे हमारा परम भक्त हैं, हमारी प्रेमिकाएं हैं। भगवान ये भाव मन में रखे थे और तो ये सोच रहे थे कि अब वो आएंगी, तो पहले से ही उनको सुख देने के लिए एक विशेष भावभंगी से वे विद्यमान थे। अथवा उन द्विज पत्नियों को देख करके भगवान के कुछ मित्र दौड़े हुए चारों तरफ से आए कि द्विज पत्नियां आ रही हैं। अथवा जो गए थे सूचना देने, जो सखा, वे लोग तो देखे कि ये लोग प्रसाद लेकर के आएंगी ही, तैयारी करने लगे, तो ये लोग आकर के खबर दिए कि वो तो बिल्कुल तैयार है, तुमने ठीक कहा। अथवा उन लोगों से भी पहले ये पहुंच गई, क्योंकि उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे नदियां समुद्र के तरफ चलती। लेकिन ज्यादातर ही लगता है कि वे गोप सब सूचना दे करके और वो चले आए होंगे, ब्राह्मणों की दृष्टि बचा करके ही आए होंगे और इसके बाद ये आई। तीन द्विज पत्नियों ने देखा श्री कृष्ण को। साग्रजम ददृशु, स्त्रियों ने देखा श्री कृष्ण को। कहाँ थे श्री कृष्ण? जमुना उपबने, जमुनोप बने, जमुना समीप बने, इसका अर्थ है जमुना के निकट के वन में। अशोक नव पल्लव मंडिते जमुनोप बने, जमुना के उपवन का विशेषण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। अशोक नव पल्लव मंडिते, अशोक अशोका नाम तरुणाम नवई पल्लवई मंडिते शोभिते। बहुत से अशोक के वृक्ष भरे पड़े थे और उन अशोक के वृक्षों में नए नए पल्लव लगे हुए थे, नव पल्लव मंडिते, बहुत सुंदर लग रहे थे। और अशोक के नए नए पल्लव वास्तव में बहुत सुंदर लगते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी लालिमा रहती है, नए नए पल्लव। जब वो बड़े हो जाते हैं कुछ काल के बाद, तो उनको पत्र कहते हैं, पल्लव नहीं कहते हैं। ये पल्लव शब्द का प्रयोग है। अशोक के वृक्षों में नए नए पल्लव लगे हुए थे, तो ऐसे अशोक वृक्षों के नवीन पल्लव से मंडित अलंकृत जमुना उपवने, जमुना के उपवन में विचरंतम, इन द्विज पत्नियों ने देखा कि श्री कृष्ण विचरंतम विशेषेण चरंतम, वे विचरण कर रहे हैं। विचरण या विशेष चरण का मतलब है क्रीड़ा कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? उस समय वे पैरों से नृत्य कर रहे थे और एक सखा के साथ ही नृत्य कर रहे थे, एक सखा के कंधे पर हाथ रखे थे। स्त्रियों ने देखा, वो इस दीर्घ श्लोक में उसका वर्णन है। कैसे था? विचरंतम क्रीड़ंतम गोपह वृतम, गोपों से घिरे हुए। तो इस पर सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि कुछ गोप दौड़ करके आए कि स्त्रियां आ रही हैं, स्त्रियां आ रही हैं मिलने के लिए, तो लोग घेर लिए। उस समय तो गोपहि वृतम साग्रजम और अग्रज श्री बलदेव जी के साथ, बलदेव जी साथ में थे लेकिन उस समय श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट में ही थे। शायद हो सकता है कि श्री बलराम जी श्री कृष्ण के भाव को समझ करके वो दूर हो गए होंगे। उस समय थे झुंड में ही, साग्रजम थे, इन स्त्रियों ने देखा, अग्रज को भी देखा, तो इन द्विज पत्नियों के आंखों से श्री सुखदेव को स्वामी वर्णन कर रहे हैं। साग्रजम दृष्टि गई श्री बलराम जी, नीला वस्त्र पहने हुए, गोरे शरीर वाले, पहले से श्रवण किया था तो समझ गए ये साग्रजम, वो बलदेव जी हैं। बलदेव जी हैं और अन्य सखा घेरे हुए हैं श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को। ऐसे श्री कृष्ण को ददृशु देखा, और आगे वाले श्लोक से इसका संबंध कैसे है श्री कृष्ण श्यामम, तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला है। जैसे लोग गीत में या विनोद में कह देते हैं कि श्री कृष्ण काले हैं, काले नहीं थे, सांवला होना और काला होना दोनों में अंतर है। बहुत सुंदर सांवला श्यामम, शरीर का जो रंग है वो देख रहे हैं ये सांवला, पहचान गए उनके तेज से, उनकी सुंदरता से और उनके रंग से, तुरंत समझ गए कि यही है प्रियतम श्री कृष्ण। और उनके सिर पर मोर पंख आदि रहता है, ये सब साजबाज था, श्रृंगार था, तो पहचानने में देर नहीं हुई, तुरंत पहचान गए। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल वर्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं और द्विज पत्नियों की आंखें कैसे कैसे भगवान पर घूम रही हैं और किस तरह से देख रही हैं वो बात आ रही है। श्यामम श्री कृष्ण को देखा, सांवले श्याम सुंदर, इसीलिए उनको तो श्याम सुंदर कहते हैं, श्यामों में सबसे अधिक सुंदर, अथवा श्यामश्च सुंदरश्च, सांवले हैं और सुंदर हैं। श्री कृष्ण को ये नहीं कहा जा सकता कि वे सबसे सुंदर हैं, ये हैं सुंदर, सुंदर अगर कहा जाए तो केवल वही सुंदर हैं, इसीलिए उनको सुंदर कहते ही हैं। और उसके साथ सांवले हैं, इसलिए सांवलापन को बताने के लिए श्याम सुंदर कहा जाता है, तो सुंदर केवल वही है, केवल श्याम ही सुंदर है। तो श्याम श्यामम शरीर का रंग, और हिरण्य परिधिम हिरण्यवत स्वर्णवत, हिरण्य सोना को कहते हैं, सोना के समान पीला परिधान रखे हैं। परिधान दो है, एक तो धोती पहने हैं और दूसरा परिधान है उत्तरीय दुपट्टा, श्री कृष्ण ऐसे ही रखते हैं, यही है भगवान का वस्त्र, भगवान ये सब फुल पैंट और ये सब नहीं पहनते हैं, सब फालतू गंदा कई दिन का पहना है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन उनकी पोशाक देखिए, और किस रंग का वस्त्र है तो सोना के रंग का। हिरण्य परिधि का अर्थ है कि सोना पहने हैं, अगर हूबहू शब्द का अर्थ लिया जाए तो सोना का परिधान रखे थे, सोना का परिधान मतलब सोना जैसा पीला वस्त्र, सोना थोड़े कोई पहनेगा, लेकिन सोना जैसा पीताम्बरम इत्यर्थ, पीताम्बर पहने रहे। ऐसे श्री कृष्ण अन्य रंग के भी वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादातर वे पीला वस्त्र पहनते हैं पीताम्बर। तो उन्हीं स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हैं, इतना चमक रहा है, सोना जैसा चमचम कर रहा है, बहुत फ्रेश वस्त्र है। भगवान का वस्त्र बहुत साफ रहता है, वो तो कभी गंदा हो ही नहीं सकता है। भगवान स्वयं चिन्मय है, दिव्य है, उनका वस्त्र भी दिव्य है। तो ये पीताम्बर पहने हुए वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांश है। नटवेशम, नटवेश में है, नट का अर्थ है नाचने वाला, वो नृत्य करने वाले के वेश में है। जब कोई व्यक्ति नाचता है रंगमंच पर तो वह धोती को पूरा नहीं पहनता है, कछनी काच लेता है और दुपट्टे को भी बांध लेता है कमर में, इसलिए परिधान शब्द दिया गया है। दुपट्टा का उल्लेख नहीं है ऊपर। वनमाल बरह धातु प्रवाल नट वेशम, नट वेश कैसा है? द्विज पत्नियां देख रही हैं कि श्याम सुंदर वनमाल फूल की माला पहने हैं, फूल की माला, खिले हुए वृंदावन के पुष्प की माला पहने हुए, तो वनमाला कहते हैं। वनमाला का अर्थ है ये पौधों में खिला हुआ पुष्प, ये नहीं कि प्लास्टिक का फूल चाहिए वो सब धारण करें। ये भगवान ने रत्नमाला भी तो पहनते हैं, सोने का आभूषण पहनते हैं, सोने की माला पहनते हैं, लेकिन कभी कभी वो माँ जबरदस्ती उनको पहना देती है। माँ जशोदा सोचती है कि हमारा बेटा भिखारी जैसा थोड़े रहेगा, वो बहुत प्रकार के आभूषण बनवा करके रखती हैं। जब श्री कृष्ण को कहती हैं कि ये पहनो ये पहनो, जब घर से चलते हैं गाय चराने के लिए तो रत्नों की माला पहनते हैं और रत्न का श्रृंगार सब, लेकिन वन में जाने के बाद ये गोप सखा कहते हैं श्री कृष्ण का आश्रय पाकर, श्री कृष्ण कहते हैं हमको फूल की माला बहुत अच्छी लगती है, जिसको वनमाला कहते हैं, हमको वनमाला अच्छी लगती है लगती है। तो बच्चे सारा श्रृंगार उतार करके गमछे में बांध लेते हैं और वृंदावन के फूलों से श्रृंगार करते हैं और घुंघची की माला भी लगाते हैं। घुंघची को क्या कहते हैं? माला लगाते हैं, नहीं बैजंती नहीं है, गुंजा, गुंजा माला, गुंजा माला लगाते हैं, जो वन में प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण के मुख पर वृंदावन में लाल लाल मिट्टी मिलती है तो उसके गैरिक धातु कहते हैं, उससे श्रृंगार करते हैं, चित्र बनाते हैं मुख पर, माटी से श्रृंगार करते हैं। श्री कृष्ण को यही पसंद है और ये सोने का मुकुट सब गमछा में बांध देते हैं और उसके बदले में एक छोटी सी हल्की पगड़ी बांधकर उस पर मोर का पंख लगाते हैं। भगवान को ये प्रिय है, पूरा वृंदावन में इसी पोशाक में रहते हैं और उधर से आते समय वो गमछा में बांधे बांधे ही श्रृंगार आता है उनका। फिर माँ सवेरे श्रृंगार कर देती है उनका। तो श्री कृष्ण का ये श्रृंगार है, वनमाला फूल की माला। भगवान श्री कृष्ण इसमें बहुत शौकीन है, माला पहनने में, फूल की माला। और आप देख सकते हैं कई तीर्थों में आप लोग गए हैं, लेकिन भगवान के लिए माला सबसे ज्यादा जो बिकती है वृंदावन में है ना। बिहारी जी के पास 15-20 दुकानें रहती हैं, वो किसके लिए सब माला बनती है? श्री कृष्ण के लिए। लोग आते हैं दर्शन करने तो भगवान को माला अर्पण करते हैं क्योंकि वो माला पसंद करते हैं। गीता में उन्होंने कहा भी है कि हमको पुष्प बहुत पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहर्तम अस्नामी प्रयतात्मना। भगवान उसको पहनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अस्नामी का अर्थ स्वीकरोमि, भगवान स्वीकार करते हैं। कोई श्रद्धा से प्रेम से श्री कृष्ण को माला देता है तो पहनते हैं। तो वृंदावन में गाय चराते समय हजारों सखा रहते हैं, तो वे अपने अपनी अपनी माला तैयार करते हैं श्री कृष्ण के लिए, कि हम पहनाएंगे हम पहनाएंगे। तो श्री कृष्ण दिन भर में तो हजारों मालाएं पहनते रहते हैं, और उधर वृंदा देवी वृंदावन में तैयार करती हैं जगह जगह श्री कृष्ण के लिए नई माला नई माला। और श्री कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं कि जितने प्रेमी होते हैं जितनी मालाएं होते हैं उतना रूप धारण करके सबका पहन लेते हैं। तो ईश्वर है, कोई जरूरी नहीं है कि एक माला उतारी जाएगी तब दूसरा पहनेंगे, जितनी मालाएं हैं उतना रूप से प्रकट हो जाते हैं। और सखा आदि श्रृंगार करते हैं, कभी कभी सखाओं को अपने मित्रों को तिलक आदि करना होता है अपने मुख में, वो भी करते हैं, तो दर्पण नहीं लेते हैं, श्री कृष्ण के गाल में मुख में देख करके अपने तिलक और श्रृंगार कर लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर बिल्कुल चमकता है मणिमय, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है साफ। ऐसा कोई देवता कोई मनुष्य नहीं है जिसके देह में आदमी देखे वो ऐनक का काम करे दर्पण का काम करे, लेकिन भगवान इतने सुंदर है इतने उज्ज्वल, उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है और उससे श्रृंगार करते हैं। तो श्री कृष्ण वनमाला पहने हैं, खूब सुंदर वनमाला, और फूल भी लगाए हैं। वनमाल्य कहते हैं, माल्य का अर्थ है जिससे माला बनाई जाए, जिसे माला बनाई जाती है उसको माल्य कहते हैं। तो माला तो और चीज की बनाई जाती है, रत्नों की और सबकी, इसीलिए वनमाल्य कहते हैं, नहीं फूलों की, फूल को ही माल्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण फूल धारण किए हैं, माला तो एक अलग है ही, इसके साथ साथ अपने पगड़ी में जहां तक खोसे हैं सखा लोग श्रृंगार किए हैं, और दोनों कान पर उत्पल लगाया है, उसके बाद में वर्णन आ रहा है। वनमाला और मोरपंख धातु गैरिक आदि धातु और प्रवाल और वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते, इसी से वो सजे हुए हैं। इन सब के द्वारा किस तरह से सजाए हुए हैं सजाए गए हैं, नट वेशम, नट जैसा वेश धारण किए हैं। इसका अर्थ है कि धोती को पूरा काछनी काछ लिए हैं। वृंदावन में गाय क्या चराते हैं, नाचते ही रहते हैं, हमेशा नाचना, इसलिए उनको नटवर कहते हैं, नाचने वालों में सबसे श्रेष्ठ। श्री कृष्ण का नाच ऐसा होता है, सबसे सुंदर नृत्य भगवान करते हैं। और वैसे भगवान शिव को भी नटराज कहते हैं, ये भी नाचते हैं, लेकिन इनका नाचना बहुत भयंकर होता है, वो तांडव नृत्य जब करते हैं भयावह। नटवर जब नाचते हैं श्री कृष्ण तो सब लोग आसपास आ जाते हैं, सब नाचने लगते हैं, और भगवान शिव जब नाचते हैं तो पूरी दुनिया को ही ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा वर्णन है कि अपने भागवत में लिखा गया है कि भगवान शिव प्रलय के समय नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य जिसको कहते हैं। पहले चारों दिशाओं के हाथियों को जो प्रेशर डालने के लिए रखे गए हैं, बैलेंस बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने बनाया है उनको, चारों हाथियों को अपने सूल से एक ही सूल में खोब लेते हैं, उनको भी मार डालते हैं। प्रलय करना है तो उनको चार महादिग्गज को जो हिमालय से भी बड़े बड़े शरीर वाले हैं उनको अपने एक सूल में खोस लेना है, मार करके पिरो लेते हैं, और ऐसे टांग करके इसके बाद वह भयानक नृत्य चालू करते हैं, सारा संसार प्रलय की चपेट में आ जाता है। तो उनका वो नृत्य कोई देखता नहीं है, जटा फैला करके विशाल, कि जटाएं भी तो कई किलोमीटर में फैली हुई है, आंधी आती है उससे जटा के घूमने से ही विकराल आंधी आ जाती है, तबाह हो जाते हैं लोग। तो वो नाचते हैं, लेकिन उनका नाचना कोई इतना प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए भगवान शिव को नटराज कभी कभी कोई कोई कहता है, पर श्री कृष्ण को तो नटवर सब लोग कहते हैं, यहां तक कि माँ यशोदा भी नटवर कहती है, सभी लोग नटवर कहते हैं, नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि द्विज पत्नियों ने देखा नट वेशम, नट के वेश में है, नाचने की मुद्रा में है, और इन इन चीजों से श्रृंगार किए हैं। वनमाल, बरह, मयूर पिच्छ, धातु और प्रवाल, नए नए पत्ते। श्री कृष्ण मयूर पिच्छ कहाँ लगाए हैं? मयूर पिच्छ को ही सोने के मुकुट में लगाए हैं, एक अर्थ यह हो सकता है, अथवा सोने का मुकुट उतार करके पंख को ही, मोर पंख को ही मुकुट के रूप में बांधे, और यही वास्तव में ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण पर बहुत श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उनका उनकी अलग उनका केश इतना सुंदर है कि अगर उसके ऊपर मुकुट बांधा जाए तो सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता है, अतः तो अच्छा नहीं लगता है। उनका काला काला केश रहे और बस उस पर कभी कभी वो मुकुट मयूर का बांधते हैं कि ऐसे एक पतली पगड़ी जैसा बांध करके एक कपड़ा, और उस कपड़े के संधि में जो केश और कपड़े के बीच में एक मोर पंख बांध लेते हैं, इसी से वो परम सुंदर लगते हैं। और कभी कभी वो सोने के मुकुट पर भी पंख लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वे कई मोर पंख सजा करके एक साथ और अपने पगड़ी में खोजते हैं, कभी कभी पगड़ी वो बड़ी बांधते हैं, क्योंकि गोपाल हैं, घाम में गाय चराना है और सब, तो पगड़ी बांधते हैं, उनकी पगड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें कई मोर पंख धारण करते हैं, और कभी कभी केवल एक धारण करते हैं। तो द्विज पत्नियों ने देखा कि वे मयूर पक्ष धारण किए हैं और धातु लगा है उनके मुख पर, शरीर पर चित्रकारी हुई थी, चित्रकारी सुंदर सुंदर नट वेश में है, और अनुव्रतान से अपने एक अनुव्रत अपने साथ नित्य रहने वाले एक सखा के अंश कंधे पर, अनुव्रत का अर्थ है सखा, अपने सखा के अंश कंधे पर विन्यस्त हस्तम, एक हाथ विन्यस्त कही है, रखे हैं विन्यास, एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे हैं, वो है श्रीदान। बहुत कुछ टीकाओं द्वारा सिद्ध होता है, सब लिखा गया है कि बाएं भाग में भगवान के श्रीदाम है और उनके कंधे पर श्री कृष्ण अपनी बाह रखे हैं, और इतरेण और इतर हाथ से मतलब दक्षिण हस्त से अब्जम धुनानम, अब्ज का अर्थ लीला कमल, कमल धुनानम घूर्णयंतम, कमल घुमा रहे हैं, कमल के पुष्प को लिए हैं उसके मृणाल के साथ, उसकी डंडी के साथ, और उसकी डंडी को पकड़ करके श्री कृष्ण कमल को घुमा रहे हैं, बांसुरी नहीं लिए हैं, बांसुरी को फेंट में रखे होंगे, क्योंकि यह बांसुरी का वर्णन नहीं आया। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उन लोगों के लिए वे बांसुरी नहीं बजा रहे थे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि बांसुरी बजा दूंगा तो ये पूरा प्रेम में विशुद्ध हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं है, परम मोह में नहीं डालना है इनको, नहीं तो पतियों के सामने या यहां श्री बलराम जी के सामने में पूर्ण भाव का प्रकाशन कर देती और बात ठीक नहीं लगती सब, तो इसलिए बांसुरी नहीं बजा रहे हैं। बांसुरी बजाना भगवान श्री कृष्ण का एक मुख्य कार्य है, वेणु कोणम तमरबिंद दलाय ताक्षम, लेकिन इन ब्राह्मण पत्नियों के लिए बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि भगवान को डर है कि बांसुरी का ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि फिर ये होश में नहीं रहेगी, प्रेम की मूर्छा आ सकती है बांसुरी की आवाज सुनकर के, इसलिए बांसुरी नहीं धारण किए। अनुव्रतान से विन्यस्त हस्तम, अपने एक सखा के कंधे पर अपना वाम हस्त रखे हैं, और इतरेण दूसरे दाहिने हाथ से अब्जम लीला कमलम धुनानम घुणयंतम घुमा रहे हैं। और कैसे हैं, जैसे जैसे दृष्टि पड़ रही है द्विज पत्नियों की, वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम कर्णयो उत्पले। गोपियों ने देखा, द्विज पत्नियों ने देखा कि भगवान के दोनों कान पर दो उत्पल हैं। उत्पल कमल का फूल जो लंबा लंबा फूलता है उसको उत्पल कहते हैं। तो उत्पल दोनों कानों पर, कर्णयो उत्पल है, दोनों कानों पर दो उत्पल हैं। और अलकाह कपोलयो, और दोनों कपोल पर, दोनों गाल पर अलक फैले हुए हैं, घुंघराले केस गिरे हुए हैं। किसी लीला आवेश के कारण या नाचने में भगवान को उस समय ध्यान नहीं था, तो उनके केस बंधे हुए नहीं थे, वो बिखर गए थे और कुछ केस गाल पर भी आ रहे थे। तो अलक कपोल कहते, अलकाह कपोलयो जस्य मुखाब्ज हास मुखे मुखाब्ज हास्य जस्य, और मुख पर हास्य। तीन चीज का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो द्विज पत्नियां देख रही हैं, कानों में उत्पल, गालों पर अलक, और मुख कमल में हंसी हंस रहे हैं। और चीज तो श्रृंगार की तरह वर्णन है भाई, कान पर उत्पल रखे हैं और अलकें गालों पर लटक रही हैं, और मुख में हंसी भी एक श्रृंगार की तरह ही धारण किए हैं। ऐसे हंसना कोई श्रृंगार नहीं है, स्वाभाविक ही वो शरीर का ही अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ विशेष ही हंस रहे हैं। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुखाब्जहासम, मुख कमल में हंसी है, मुखाब्जहासम। तो कानों पर उत्पल, गालों पर अलक, और मुख कमल में हंसी। इस वेश में, इस तरह से लीला पूर्वक लीला वेश में श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं द्विज पत्नियां। भगवान अपने सौंदर्य को इस तरह से दिखा रहे हैं। वे आई, अब तक प्रियतम श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनी थी, उनके लीला का वर्णन सुनी थी, आंख से देखा नहीं था, आज आंख से देख रही हैं। इसकी टीका थोड़ी सी मैं पढ़ रहा हूं। हिरण्य शब्दे न ईषद रक्त पीत पटाम्बरम लक्ष्यते। हिरण्य शब्द का अर्थ है पीला वस्त्र, लेकिन पीला एकदम पीला नहीं, उसमें थोड़ी थोड़ी लालिमा रहे, उसको पीताम्बर कहते। जैसे ये है, इसमें थोड़ी लालिमा ज्यादा है, जो लालिमा कम हो और पीला हो, लालिमा रहे और पीला, उसको पीताम्बर कहा गया। भगवान ऐसे वस्त्र पहनते थे। तो पीताम्बर इत्यर्थ लक्ष्यते। तत्र च आच्छादन वाचकेन परिधि शब्देन परिधानोत्तरीय संवरणात्। परिधि शब्द कह रहे हैं, परिधि का अर्थ होता है आच्छादन, पहनना, परिधि। तो पीताम्बर में धारण किए हैं, नीचे का पीताम्बर पहने हैं और उत्तरीय को बांध लिए हैं, उत्तरीय को ऐसे कंधे पर नहीं रखे हैं, बांध लिए हैं। वनमाला आदि नाम सन्निवेश जथा शोभम उह्यम। वनमाला आदि का सन्निवेश कहाँ कहाँ कौन है इसको अपने आप समझ लेना चाहिए। तत्र वनमाला वक्षसी, द्विज पत्नियां देख रही है बनवाला कहां पर, वक्षसी, वक्षस्थल पर लटकी हुई बनमाला, बनमाला वक्षसी। अच्छा, बरहम मयूर पीक्ष केश पास, केश पास में मयूर पीछे है, लेकिन उस समय भगवान केश पर बंधन नहीं किए हैं, चोटी नहीं सवारे हैं, जो बांधे नहीं है, तो केश पास का अर्थ है अपने पीताम्बर से ही वे सिर पर ऐसे बांध लिए हैं, अथवा कोई दूसरे कपड़े से अपने केश पर बंधन डाले हैं। तो केश पर बंधन डाले हैं, फिर भी कुछ अलकें, कुछ केश दोनों गालों पर लटके हुए हैं, यह भी एक शोभा विचित्र ही है। आजकल तो कितने लोग अपने केशों को फैला कर दिखाते हैं कि हमारा केश बहुत सुंदर है ये, लेकिन श्री कृष्ण के जो केश हैं, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण आपके केश बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े पतले हैं, लेकिन ये लोक लाज की लोहे की श्रृंखला को भी तोड़ देते हैं। सूक्ष्म केश, लेकिन मतलब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनको देख करके लोक बंधन, लोक लाज आदि टूट जाता है, उसको देखने के लिए ही हम बेचैन हो जाते हैं। बहुत सुंदर केश है भगवान, इसीलिए उनको केशव कहते हैं। जो केश को खूब अच्छा से रखें, जिनके केश बहुत सुंदर हैं, उनको केशव कहते हैं। भगवान का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, केशव, केशव। ऐसा केश किसी का नहीं है, परम सुंदर, परम स्निग्ध, हमेशा ऐसा लगता है कि उसमें तेल लगाया हुआ है। तो तेल लगाया हुआ नहीं है, वो अपने आप स्वरूप में ही वो छलकता रहता है, केश ऐसे। तो केश पास में मयूर पीछे है, और भगवान की कुछ अलकें दोनों गालों पर लटकी हुई है, मानो वे यह दिखा रहे हैं कि हमको क्रीड़ा में, विहार में हमें ध्यान नहीं है कि हमारा केश गालों पर लटका हुआ, केश संवारने की फुर्सत नहीं है। ऐसे आज संसार में देखा जाता है कुछ लोग केश रखते हैं तो चाहते हैं कि हमारा केस लटक करके हमारे आंख के पास इधर आवे, फिर भी हटाते रहते हैं, और ऐसे हटाते हैं कि वो एक दो चार सेकंड में ही फिर आ जाता है ना। तो यह भी एक रसिकता है, केस को हटाना लेकिन फिर गिरेगा, फिर हटाना फिर गिरेगा। भगवान श्री कृष्ण तो रसिक शेखर हैं, तो इस तरह से अपने केसों को रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हटा रहे हैं, हटाते हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं वे गालों पर। तो बर है मयूर जो है, बरहावतंस, वो केश पास में है, अथवा रत्न खचित सौवर्ण मुकुटो परी, रत्न से बने हुए, रत्न से भरे हुए मुकुट के ऊपर केश है, वो मयूर पीछे है, अथवा तन मयम व मुकुटम, मयूर पिछ का ही मुकुट है, कई मयूर पंख है उसका मुकुट है, और गैरिकादि धातु तिलकादौ, गैरिक धातु कहां लगाए हैं, धातु तिलक आदि में तिलक बनाया गया है गैरिक धातु से, ये भी एक मिट्टी ही है गोपी चंदन, ये परम पावन है गोपीजनों के शरीर का अंग है, ये बहुत पवित्र है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गैरिक धातु लगाते हैं, कहां लगाते हैं, तिलकादव, तिलक आदि में, तिलक आदि के रूप में गैरिक धातु, और इसके साथ उनके गाल पर चित्रकारी की जाती है, ललाट पर की जाती है, यहां पर धातु धारण किए। प्रवाल केश पासाग्रे मुकुटाग्रे च, और प्रवाल कोमल कोमल पत्ते कहां लगाए हैं, बहुत सुंदर पत्ते, सुंदरतम भगवान पर सुंदर सुंदर पत्ते वृक्षों के लगाए गए हैं। केश पासाग्रे, केश पास जो केस को बांधे हैं तो उसके अग्र भाग में ऐसे नीचे से एक पगड़ी के कई स्तर होते हैं, लेयर होते हैं, तो उसमें वो खोसे हुए हैं। और कोई कोई मुकुट में भी, मुकुट के पास भी और पगड़ी में खोसे हुए हैं, गुच्छ लगाए हैं। ये समझ लेना चाहिए कि कौन श्रृंगार कहाँ है। मुकुटम च तन्मयम सदा अस्ति एव। मयूर का पंख तो भगवान के लिए मुकुट के रूप में सदा रहता ही है। कि वह पट पीत वस्त्र उष्णीसो परि प्रबाल इतेवम नटवद वेशम अनुव्रतान से विन्यस्त हस्तम इति लीला विशेषण स्वतो अवस्थाना। लीला आवेश से श्री कृष्ण स्वयं ही सखा के कंधे पर अपनी बाह रखे हैं, अथवा तत्काल में कोई क्रीड़ा किए हैं, खेल किए हैं, तो थके हैं, तो अवलंबन लेने के लिए सखा के कंधे को पकड़ करके खड़े हैं। जदवा गोपई ही सह आत्मन अत्यंत स्नेह भरा, और गोपों से घिरे हुए हैं, गोपों से श्री कृष्ण का अत्यंत स्नेह है और श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह है। इतरेण दक्षिण हस्तेन अब्जम लीला कमलम भ्रामयंतम इति वैदग्धि विशेष स्वभावत। ये श्री कृष्ण का एक अद्भुत वैदग्ध पूर्ण स्वभाव है कि वे हमेशा एक्टिव है और लीला कमल घुमा रहे हैं, सखा के साथ खड़े हैं, घुमा रहे हैं। इस पर श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लीला कमल घुमा रहे हैं तो ऐसे उनका स्वभाव है, घुमाते रहते हैं, अथवा उनके मुख पर भौंरे आ रहे होंगे, भौंरों को हटाने के लिए वनमाला पर भी भौंरे आते हैं और मुख कमल है ही, तो उसके सुगंध से प्रभावित होकर के भौंरे आते हैं, तो श्री कृष्ण लेकर के कमल घुमाते रहते हैं, कोई हमारे मुख पर बैठे ना, भौंरा ना बैठे, कमल समझ करके भौंरे बैठ जाते हैं कमल पर। वो तो भौंरे बड़े बड़े भक्त हैं, तो इस तरह घुमा रहे हैं, अथवा स्वाभाविक ही ये लीला वैदग्धि है। किंवा तासाम अशेष तापा पन्नोद बोधनम, अथवा द्विज पत्नियों के संपूर्ण ताप को, जलन को मिटाने के लिए मानो कमल को दिखा करके ऐसे कह रहे हैं। कमल बहुत शीतल होता है और ताप मिटाने वाला होता है, तो मानो श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ताप को, दुख को, मेरे अदर्शन का जो क्लेश है, हमारा दर्शन नहीं हो रहा था, ये जो क्लेश है ये मिट जाएगा। इस लीला कमल को देखते ही दर्शन अदर्शन जनित क्लेश मिट जाएगा, मानो ये दिखा रहे। तो इस प्रकार विशेषणानाम एषाम सौंदर्य जथोत्तरम आधिक्य मोह्यम, जितने विशेषण दिए गए हैं श्री कृष्ण के शोभा के, इसमें से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तो उत्तरोत्तर कौन कौन श्रेष्ठ है, जैसे आपने श्रृंगार पढ़ा, हिरण्य परधिम वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेशम और अनुव्रतन से विन्यस्त हस्तम इतरेण अब्जम धुनानम और कान पर उत्पल कपोल पर अलक और मुखाब्ज में हास, ते उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सौंदर्य। वास्तव में सबसे सुंदर श्री कृष्ण में क्या है, उनकी हंसी सबसे सुंदर चीज है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम बदनम मधुरम। तो बिलमंगल ठाकुर जी कहते हैं कि इस श्री कृष्ण का सारा शरीर नख से सीख तक मधुर है, मधुर है, मतलब मधुरात मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, इस विभु के, इस विभु का बदनम बहुत मधुर है, शरीर बपु बपु मधुर है। मधुरम मधुरम बपु अस्य विभो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, तीन बार मधुर लगाए, दो बार मधुर कहे सारे शरीर के लिए और तीन बार मधुर कहे बदन के लिए, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुगंधी मृदुस्मित मेत दहो। और इस बदन में जो मृदु गंधी स्मित है, जो स्मित है उससे भी बहुत सुंदर गंध निकल रही है। मुस्कान में थोड़े गंध निकलती है लेकिन वे इस तरह से बोल रहे हैं, मृदुगंध मृदुस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम, चार बार का। श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, जो उनका अधरामृत है, वो मधुर से भी मधुर है, मधुर से भी मधुर है, मधुर से भी मधुर है, चार बार कहते हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं जितने विशेषण श्री कृष्ण के सौंदर्य के दिए गए हैं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, एक के बाद दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा श्रेष्ठ, चौथा श्रेष्ठ और अंतिम श्रेष्ठतम है मंद मुस्कान। भगवान अपने मुस्कान से ही सारे जगत को वश में कर लेते हैं। एक बार अगर हंस करके किसी के तरफ देख दें तो क्या मजाल कि अब दूसरे तरफ जाए, वो खींच ही लेते हैं। और गोपीजनों के लोग लज्जा धैर्य आदि को छुड़ा देते हैं, उनको कुछ भी ध्यान नहीं होता है संसार का। ऐसा यह सब भगवान का वर्णन है। और वास्तव में जो लोग श्री कृष्ण को समझे हैं, भक्त लोग, वो भगवान की इस लीला को समझ सकते हैं, इस तरह से सुंदर है। तो इन द्विज पत्नियों ने इस तरह से श्री कृष्ण को देखा। ततश्च जमुनोप वने ददृशु कृष्णम इति शेष न तिष्ठति शोको जस्मात् इति श्लेषेण अशोक तत्तरु दर्शनाद पितासाम तद विरह शोको अपगत इति अर्थ। जमुना के किनारे जिस वन में श्री कृष्ण थे, अशोक वृक्षों को देखते ही इनका विरह दुख खत्म हो गया। अशोक शब्द इसीलिए है, अशोक न विद्यते शोको जस्मात् तत् विचरंतम परिभ्रमंतम क्रीणंतम वा। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुंदर लगते हैं, इस तरह से श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ और अधिक सुंदर लग रहे थे। साग्रजम इति श्री कृष्ण बलराम जी के साथ थे, तत्साहित्य न शोभा भरोदयात, इसे श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ रही थी श्री बलराम जी थे तो। किमत तासम गमने न तस् संकोच अवस्थित तासम व तस्मिन भाव विशेष विशेष भाव न भाव। अच्छा, अब श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब द्विज पत्नियों ने भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य का तो वर्णन हुआ, ऐसे हैं, ये वेश धारण किए हैं, ऐसे हैं, पर इन पर क्या प्रभाव पड़ा दर्शन करके। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने प्रियतम के गुणों को, उदय को तो ये बहुत सुनी थी और सुनने से ही इनका मन पूर्ण निमग्न था। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य के विषय में ये सुन करके अपने मन को श्री कृष्ण में रख चुके थे, इनका मन हमेशा निमग्न था, मन में श्री कृष्ण समाये हुए थे, मन से श्री कृष्ण को देख रही थी, लेकिन आज आंख से देखा, ये वर्णन कर रहे हैं। प्रायः श्रुत प्रियतमो दय कर्ण पूरहि जस्मिन् निमग्न मनस स्तमथा क्षीरन्ध्रहि अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापम् प्राज्ञम जथाभिमतयो बिजहु नरेंद्र। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं, हे नरेंद्र, हे मनुष्यों में इंद्र, इंद्र का अर्थ होता है स्वामी या राजा नरपति, तो हे नरेंद्र, जब विप्र पत्नियां भगवान का दर्शन करके और प्रेम में विशुद्ध हो रही हैं, तो महाराज परीक्षित इसको सुन करके आनंद में मग्न हो रहे थे। तो उनको और सावधान करने के लिए कि महाराज आप अपने को संभालिए, आप आनंद में प्रेम में मूर्छित मत होइए, इसके लिए संबोधन किया। नरेंद्र प्रायः, प्रायः का अर्थ बाहुल्य के अर्थ में प्रयोग होता है। हे नरेंद्र, हे महाराज परीक्षित, इन द्विज पत्नियों ने बहुत बहुत सुना था श्री कृष्ण के गुणों को। प्रायः बहुशः श्रुत प्रिय तमोदय कर्ण पूरही श्रुता ये प्रियतमस्य उदय उत्कर्षः तयव कर्ण पूरः कर्णौ पूरयन्ति कृतार्थौ कुर्वन्ति इति कर्ण पूरः तैः कर्णाभरण हरिति वा। श्रीकृष्ण के उदय को, श्रीकृष्ण के महिमा को अर्थात उनके सौंदर्य को, उनके लीला वैभव को इस श्लोक में उदय कहा गया है। उदय, उदय का अर्थ उत्कर्ष। इन विप्र पत्नियों ने बहुत बहुत श्रीकृष्ण के विषय में सुना था और श्रीकृष्ण के गुण कानों को कृतार्थ कर देते हैं, इसीलिए श्रीकृष्ण के गुण को कर्णपूर कहा गया। कर्णपूर, कर्णपूर का अर्थ होता है एक तो कर्णाभरण है, कान का गहना, कान का वास्तविक श्रृंगार है भगवान के विषय में सुनना। इन्हें द्विजपत्नियों ने बहुत बहुत सुना था श्री कृष्ण के विषय में, इनके कानों के को कृतार्थ कर चुके थे भगवान के गुण। पूर्यति का अर्थ है दो दो अर्थ, एक तो पूर्ण करना, शोभित करना, कान को जो सुंदर बनावे, सुंदर दिखाई दिखावे, उसको कर्णपूर कहते हैं। कान में गहना लगाया जाता है जो कर्णपूर कहते हैं, अथवा कर्णह पूरयन्ति कृतार्थयन्ति या कृतार्थ कुर्वन्ति इति अर्थ, जो कान को कृतार्थ कर दे वे हैं कर्णपूर। भगवान श्री कृष्ण के उदय अर्थात उनके सौंदर्य आदि का वर्णन कानों के असली आभूषण है। द्विज पत्नियों के कानों को ये कृतार्थ कर चुके थे, बहुत सुनी थी और सुनने के कारण जस्मिन निमग्न मन स, जिस श्री कृष्ण में इनका मन पूरा पूरा मग्न हो चुका था, मन में श्री कृष्ण की लीलाओं को देखती थी, अथ अब यहां पहुंचने के बाद जमुना तट पर अक्षी रंध्रई, अब नेत्र रंध्रों से लोचन द्वार ही अर्थात रूप ग्रहणे साधकतम नेत्र रंध्रेन्द्रिय द्वार भूत। अब तक तो केवल सुनी थी कृष्ण के विषय में, कृष्ण के विषय में सुनने से ही इनका मन निमग्न हो चुका था कृष्ण में, पर अब अक्षी रंध्र आंख के छिद्रों से अर्थात आंख के द्वार से अंतः प्रवेश श्री कृष्ण को भीतर ले गई। चूंकि वहां और गोप सखा थे और श्री बलराम जी भी थे, अतः श्री कृष्ण पर बहुत देर तक नहीं देख पाई, सामने लज्जा आ रही थी। देख ही श्री कृष्ण के वेश को, रूप को, हंसी को, जिस जो वर्णन हुआ वही पूर्व कर लेना चाहिए। इस तरह से श्री कृष्ण को देखी, अक्षी रंध्र आंखों से देख रही थी। तो उस समय बर्तन को नीचे रख करके, जो भोजन के बर्तन थे सभी बर्तनों को नीचे रख करके, भोजन को नीचे रख करके और देखने लगी, देखने लगी तो तुरंत ही ध्यान गया कि साग्रज हैं, मतलब अग्रज बलदेव जी हैं। तो थोड़ा संकोच हुआ, इसलिए उनको अंतह में ले गई। देखिए वास्तविक ध्यान इसी को कहते हैं, भगवान को देखा आंख खोल करके और देख करके फिर उनको अंतह में ले गई। अंतह में ले जाने का आशय ये था कि उसने सोचा कि नहीं नहीं इधर बाहर नहीं, भीतर, अब आंख के द्वार से भीतर ले गई, अंतः प्रवेश, वही सौंदर्य जो देखी है सब कुछ भीतर ले गई, और सुचिरम परिलभ्य, और वहां पर देर तक आलिंगन करती रही भगवान का, परिलभ्य परिरंभण की, भीतर हृदय में ले जाकर के कृष्ण को और वहां लगी आलिंगन करने, वहां कौन देखने वाला था, बलराम जी बाहर थे, वो भीतर थोड़े देख रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भीतर अंतःकरण के कमल पर्यंक पर, पलंग पर, वह श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगे। आलिंगन में केवल इतना ही तात्पर्य नहीं कि वह मन में खड़े खड़े श्री कृष्ण को अखबार में पकड़ ली और आलिंगन करने लगी, वो श्री कृष्ण को लेकर के अंतःकरण के, अंतःकरण रूप पलंग पर श्री कृष्ण को लिटा करके उनका आलिंगन करने लगे। इतना सुंदर भगवान उनको अपने अखबार में भर ली, और सुचिरम, श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसा लगता है मानो वहां पर वो वीडियो उतार रहे हो। सुचिरम, सुचिरम का अर्थ है कि जितना देर देखी थी उससे कई गुना अधिक समय तक आंख बंद करके ही रखे। और वहां पर अब ये मत समझिए कि हम लोग जैसे ध्यान करते हैं तो फिर आंख खोल करके देखना पड़ेगा तब ध्यान आएगा, नहीं तो मन भाग जाएगा इधर उधर। पहले ही निमग्न मन था श्री कृष्ण में, और श्री कृष्ण को देख करके और बलराम जी के लज्जा से, संकोच से श्री कृष्ण को अंत हमें ले जा करके, और वहां सुचिरम परिरभ्य बहुत देर तक आलिंगन की, और हे नरेंद्र इस तरह से तापम जहु का दीर्घ काल तक श्री कृष्ण को न देखने की जो जलन थी, आंखें तरस रही थी कि कब प्रियतम श्याम सुंदर को देखेंगे, कान तो कृतार्थ हो चुके थे, कान से वो देख रही थी और मन से देख रही थी, मन निमग्न था, लेकिन जो मन श्री कृष्ण में निमग्न था उस मन के भीतर आज ले गई कृष्ण को, अंतःकरण में भीतर, और ले जाकर के आलिंगन करने, यह है ध्यान, इसको ध्यान कहते हैं। भगवान का इस तरह से ध्यान होना चाहिए, जो जिस भाव से है, अगर सेवक है दास है तो भगवान को पंखा झलेगा मन ही मन, या उनके लिए भोजन लाएगा, माला बनाएगा और जो कुछ भी करेगा मन ही मन, ये इसको कहते हैं ध्यान। यह नहीं कि ध्यान अलख निरंजन ध्यान, वो है जिसको लखा ही नहीं जा सकता है, तब तुम क्या कर रहे हो, बेकार बैठे क्यों हो, जब देख भी नहीं सकते, कोई रूप ही नहीं है, ये नहीं है, ये सब कहना कितना आसान है लेकिन कितना बड़ा पाखंड है। ध्यान करो, ठीक है ध्यान करना चाहिए, ध्यान तो करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का सीधा ध्यान करो, उनका चरण ऐसा है, उनका पीताम्बर ऐसा है, उनका सिर ऐसा है, मोर पंख बांधे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और विविध लीला कर रहे हैं, रासलीला में नाच रहे हैं, या कालिये के फण पर नृत्य कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये सब दृश्य मन में देखना, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान ऐसा नहीं कि कोई लाइट देखो उससे अच्छा है कि बल्ब पर देखो, यही ध्यान है, लाइट देखो, ये सब थर्ड क्लास की बातें, लाइट देखो तो गैस पेट्रोमिक्स बार करके देखो आंख भी खराब हो जाएगी, हमेशा देखते रहो, लाइट देखते। चिंतन का मतलब ही होता है कोई रूप, कोई गुण, कोई क्रिया रूप, इसका चिंतन। तो संसार की बातें, संसार का रूप भूल करके भगवान में अपने चित्त को लगाना, इसको ध्यान कहते हैं। और वो ध्यान तब होता है जब बाहर हम भगवान के बारे में सुने और देखें, जब सुनते हैं और देखते हैं तो उसका ध्यान होता है। तो ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत काल तक सुना है भगवान के विषय में और आज देखी भी है, तब ध्यान हो रहा था खूब फर्स्ट क्लास का, भगवान को भीतर लेकर के आलिंगन करने लगी। और इतने दिन तक भगवान को न देखने का जो क्लेश था, और भी एक क्लेश था, एक तो दर्शन नहीं होता था, ये दुख था, और दूसरा उनके अंग का स्पर्श नहीं मिल रहा था, उनका चरण छूने का या उनका सुंदर देह छूने का मौका नहीं मिल रहा था, यह बहुत जलन थी उनके हृदय में। तो आज मन में भगवान श्री कृष्ण को छू करके, आलिंगन करके सारा दुख चला गया। तापम बिजहु, बिजहु का अर्थ है कि विशेष रूप से जहु, ऐसा ताप का अपगमन हुआ, ताप चला गया कि फिर अब ये ताप जीवन में आएगा नहीं, अब ये क्लेश नहीं आएगा। जो देख लिया कृष्ण को तो कभी भी मन में उनका आलिंगन कर सकती थी, कभी भी उनका चरण कमल छू सकती थी। ये है दर्शन का प्रभाव। इसीलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा बेकार है, ये है वो है, बेकार वास्तव में उनका दिमाग है। भगवान को देखने के बाद ध्यान होता है, तो भगवान को देखना चाहिए। प्रतिमा व लोकम विधेयम सदा, हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान के प्रतिमा को हमेशा देखना चाहिए, नित्य प्रतिदिन देखना चाहिए। देखने से तब भगवान का रूप मन में छाता है, नहीं तो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान कोई खाक करेगा, ध्यान कहने से थोड़े करेगा, ध्यान कोई नहीं कर सकता ऐसा। ध्यान का क्लास लगा तो मान लीजिए किसी को कहा जाए, 10-20 आदमी जुटे हैं और कोई मेडिटेशन सेंटर खोल दिया, ध्यान करो, ये 100-200 आदमी बैठे हैं, कहते सावधान, ठीक है, सीधा बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और नाउ बिगिन मेडिटेशन, अब ध्यान चालू करो। तो ध्यान चालू करो, दिन भर जो देखा है सुना है वही आंख बंद करके वो देखेगा, है ना, यही तो ध्यान करेगा। जो जो चीज देखा है सुना है दृष्ट श्रुत है वही वो ध्यान में देखेगा, इसको ध्यान थोड़े कहते हैं। और इस तरह से अगर कोई मान लीजिए सो जाए दिन में या रात में तो कहेंगे तब महासमाधि में, तो समाधि में सपना तो आता है ना, वो सपना तो वही आता है जो देखा है और सुना है, कभी कभी पूर्व जन्म का भी देखा सुना आता है सपना में। तो देखना और सुनना मुख्य है, उसमें भी सुनना मुख्य है। जो व्यक्ति भगवान की बात सुनेगा, भगवान का दर्शन करेगा, तो उसको भगवान का ध्यान होगा, ठीक ठीक ध्यान होगा, और नहीं तो ऐसे फालतू पाखंड पथ में पढ़ करके कर ध्यान कर। ध्यान करना आज के युग में ध्यान का कौन, ध्यान की कौन बात करते हैं जो एक नंबर के आलसी हैं, कुछ करना नहीं है बस बैठो बैठो, और बीच बीच में देखा भी जाता है कि वो ध्यान क्या कर रहे हैं, बीच बीच में झपकी ले रहे हैं ध्यान है। इसे तो अच्छा है कि सो करके पूरा समाधि में ही रहा जाए ध्यान करते हैं। इस तरह से दुनिया को ठगा जा रहा है। श्रीमद् भागवतम इसी संसार में है, भगवान की के प्रतिमा भी है, सब कुछ। खेद की बात है कि लोग सुनते नहीं पढ़ते नहीं। यहां पर ब्राह्मणों की पत्नियां जो भगवान को अपने हृदय में ले गई और वहां वे पूर्ण रूप से उनका स्पर्श कर रही है, आलिंगन कर रही है सर्वांग श्री विग्रह का, और वो मन में भगवान का आलिंगन करने से तापम विजहु सारा दुख चला गया। कैसे, जैसे अहम वृत्तय अभिमतय, कोई व्यक्ति बहुत बड़े घमंड में हो कि मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं ये हूं, इसको अभिमति कहते हैं, अभिमतय। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति की भेंट किसी प्राज्ञ से होती है, प्राज्ञ का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, भगवान का भक्त, तो किसी भक्त से जब भेंट होती है किसी अभिमानी व्यक्ति की, तो अपना अभिमान छोड़ करके और वह भगवान कृष्ण की कथा सुनता है या उस भक्त की शरण लेता है, तो उस समय उसके सारे अभिमान आदि दोष निवृत्त हो जाते हैं, उसका दुख खत्म हो जाता है। तो इस संसार में सबसे बड़ा सुख है वैष्णवों का साथ मिलना, वैष्णवों का संग मिलना। तो वैष्णवों के संग में कोई व्यक्ति आता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। इस तरह से भगवान का आलिंगन करके द्विजपत्नियों का सारा क्लेश दूर हो गया। केवल एक पक्षीय दृष्टांत है यह, दुख दूर हुआ केवल इतने के लिए ही ये दृष्टांत है। तो भगवान ने श्री कृष्ण का स्मरण करने में और उनका दर्शन करने में और श्रवण करने में ये परम सुख है यह ध्वनित हो रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आज तक अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों को ये सुनी थी और सुनने से ही इनका चित्त भगवान में पूरा पूरा रम गया था, लेकिन आज इनके जीवन का परम सौभाग्य था कि अक्षी रंध्र है, आंख के द्वार से श्री कृष्ण को भीतर प्रवेश करा करके उनका आलिंगन करने लगे। और आंखें उस समय जल्दी खोल नहीं रही थी जबकि श्री कृष्ण सामने हैं और उनको भीतर देख रही थी, और ऐसा लगता था कि उनको डर था कि अगर हम आंखें खोलेंगे तो श्री कृष्ण बाहर भाग जाएंगे, इसलिए किवाड़ बंद करके भीतर ही रखो, इतना ध्यान हो रहा था। एक श्लोक भी है, एक कोई स्त्री अपने या श्री राधा रानी कोई गोपी भगवान श्याम सुंदर को देख रही थी मन ही मन, तो कोई दूसरी सखी कहती है अरे सखी, श्याम सुंदर आ गए थे सामने, तो कहती अरे सखी आंख खोल करके देखो ये श्याम सुंदर आ गए हैं इधर लीला कर रहे हैं, देखो देखो देखो। तो आंख बंद किए कि कहती नहीं 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 वो भाग जाएंगे, अभी हमारे हृदय कोठरी में है, हृदय भवन में है, वो भाग जाएंगे इसलिए नहीं खोलूंगी। और श्याम सुंदर सचमुच के आकर के खड़े थे और वो कहते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं खोलूंगी, वो भाग जाएंगे बाहर। तो सचमुच के बाहर अगर दर्शन हो तो भी दर्शन जब बाहर होता है तो हृदय से बाहर ही तो दिखाई देते हैं, डायरेक्ट दिखाई देते हैं। तो सुचिरम शब्द पर ये बात लिखी गई है कि देर तक गोपी बंद रखी कृष्ण को अपने हृदय भवन में, खोल नहीं रहे थे। तो आंख से देखना या मन से देखना दोनों में अंतर नहीं है, यदि रियल देखा जाए तो। मन भी एक इंद्रिय है और आंख भी एक इंद्रिय है। तो आज तक जिनको मन से देख रही थी रात दिन, मन जिन में रमा हुआ था, आज उनको आंखों से देखा और तब जलन दूर हुई। मन में देखने से जलन दूर नहीं हो रही थी, क्या जलन हो रही थी कि मन से देख रही थी आनंद तो मिल रहा था लेकिन आंख से न देखने की जलन और बढ़ जाती थी, सुन करके जलन बढ़ जाती थी। सुनने से तृप्ति होती है, आनंद मिलता है, लेकिन कृष्ण को देखने की जलन बढ़ जाती है सुनने पर। तो तापम जहु, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन्होंने ताप बिजहु, ताप पूरा पूरा छोड़ दी, मतलब ताप से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंग के स्पर्श के अभाव के कारण जो क्लेश हो रहा था, स्पर्श नहीं मिल रहा था श्री कृष्ण का या आंखों से दर्शन नहीं होता था, यही बहुत बड़ा दुख था। आज वो दुख दूर हो गया। श्री कृष्ण ताश तथा दृष्टवा प्राप्ता। तो भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये द्विज पत्नियां मेरे निकट आई हैं और उनकी इस दशा को भगवान ने देखा कि ये बर्तन रह करके किस तरह स्तब्ध खड़ी हैं और मुझे भीतर देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अखिल दिग्दृष्टा है, अखिला नाम प्राणी नाम दिग्दृष्टा साक्षी इति अर्थ, समस्त प्राणियों के हृदय के साक्षी है भगवान। केवल ऐसा नहीं कि बाहर से ही केवल देखते हैं, बाहर का तो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन एक एक प्राणी के अंतःकरण में क्या है, कौन विचार उठ रहा है, संकल्प विकल्प, उस सब कुछ के दृष्टा है और उनमें भूत भविष्य वर्तमान का भी भेद नहीं है, सब कुछ देखते हैं। तबे ब्राह्मण पत्नियों के अभिप्राय को, उनके हृदय के भाव को पूरा पूरा देख रहे थे और जानते हैं कि ये त्यक्त सर्वाशा, ये सारा मनोरथ छोड़ करके, सारी आशा अभिलाषा छोड़ करके, कहीं इनका मन नहीं है, कहीं संकल्प नहीं है, कहीं कुछ करने की या प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये आई हुई है। आत्मदिदृक्षया, भगवान ने देखा कि आत्मदिदृक्षया हमको देखने की लालसा से आई। देखने से तात्पर्य है देखना और सेविका भाव से रह जाना, प्रिया भाव से रह जाना कृष्ण के पास। दिदृक्षया, भगवान ने देखा ये आई है, केवल इनके इनके जीवन में एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा, इच्छांतर नहीं है, दूसरी इच्छा नहीं है। और वो क्या इच्छा है? आत्मदिदृक्षा, श्री कृष्ण को देखने की लालसा, कैसे हैं, कितना सुंदर हैं, और उनकी सेवा करने की लालसा। इसमें आप छिपा हुआ, भगवान ने देखा। इस तरह से सभी संकल्प विकल्प छोड़ करके, कहीं से सुख पाने की आशा का त्याग करके, या आशा का अर्थ होता है मनोरथ, अपने परिवार पति आदि के चिंतन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अपने सुख की भी कोई कभी अभिलाषा नहीं है, केवल आत्मदिदृक्षा है कि श्री कृष्ण को देखें, श्री कृष्ण से भेंट करें, यही लालसा है। और इस तरह से भगवान ने जब उनको देखा कि भीतर मेरा आलिंगन कर रही हैं और उनके पूर्व के ही अभिप्राय को सब देखे, तो ऐसा जान करके भगवान हंस रहे थे, प्रहसित आनना, हंसी आ रही थी भगवान को, हंस रहे थे, स्वाभाविक हंस रहे थे, उनके मुख पर तो स्वाभाविक मुस्कान रहती है। अखिल दिग्दृष्टा प्रहसितानन सन भगवान आह, प्राह प्रकर्षण आह। तो भगवान ने देखा कि हमको देखने की इच्छा से ही त्यक्त सर्वा आशा, श्री कृष्ण को देखने के अलावा और कोई संकल्प, कोई इच्छा इनकी नहीं थी संसार में और कुछ। और आत्मदिदृक्षा का अर्थ है कि श्री कृष्ण को देखने की लालसा थी, न कि श्री कृष्ण से कुछ पाने की इच्छा थी। श्री कृष्ण को देखना, श्री कृष्ण की सेवा करना, ये आशा थी। तो ताह तथा प्राप्ता, उनको इस प्रकार से आगत देख करके, तथा भूता का अर्थ है कि अन्न स्थाली, भोजन की थाली रख करके, बर्तन रख करके, और वे अब प्रेम में मूर्छित रही थी, भगवान का आलिंगन करके अब वो विशुद्ध हो रही थी, आनंद में विभोर हो रही थी। तो भगवान ने देखा कि हो सकता है कि स्खलन हो जाए, स्तंभित विकार हो जाए, गिर जाए, मूर्छा हो जाए, तो इसीलिए भगवान बोले, तुरंत बोले। विज्ञाय का अर्थ है विशेषेण ज्ञाय प्रकर्षेण जुक्ति प्रदर्शनादिना प्राह इति सर्वज्ञा सर्वज्ञानाभिज्ञ ब्राह्मणी नाम आशाम दास्यादि स्वीकार नामे जुक्ता। अखिल दिग्दृष्टा का अर्थ है भगवान बोले तो क्या सोच करके बोले। पहले उन्होंने सोच लिया कि मैं एक गोप हूं और ये ब्राह्मणी है, ये उत्तम जाति की हैं और हमको ये प्रियतम मानती हैं, तो मुझे कैसा बोलना चाहिए, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बहुत युक्तिपूर्ण वचन बोल रहे हैं, ऐसी बात बोलेंगे, उनको स्वयं ही युक्ति बताएंगे कि हमसे प्रेम करो लेकिन इसके साथ साथ यह करना है। अथवा इसका एक अर्थ है कि भगवान उनका अभिप्राय पूरा जानते थे कि प्रियतम भाव से मेरी उपासना कर रही हैं, मेरा भजन कर रही हैं, फिर भी वे लौटने को कहेंगे, ये अर्थ है। उनके अभिप्राय को जानकर भी भगवान ऐसा वचन बोले। और प्रहसितानना, भगवान के मुख पर हंसी थी, इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान तो जान गए कि मैं इनको लौटाऊंगा, तो घर जाने में इनको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, उस दुख से भगवान दुखी हैं, लेकिन फिर भी प्रहसितानन, इनके मुख आनन पर हंसी है। तो आनन पर हंसी है इसका मतलब मन में हंसी नहीं है। प्रहसितानन, मुख पर केवल हंसी दिखा रहे हैं जिसे उनको दुख का अनुभव न हो। बाहर से केवल मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मन में दुख है कि ओ, इनको लौटना होगा, इनको मैं लौटाऊंगा, इनको बहुत दुख होगा, ये भगवान सोच रहे हैं। अथवा भगवान ने ये विचार किया कि इस ब्रज में रहते समय, ब्रजवास करते समय मेरे परिग्रह का कोई योग्य है तो गोपियां ही हैं, गोपियों के अतिरिक्त तो मैं किसी को अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान ने सोचा। तो उनके जग पत्नियों के दुख का चिंतन कह रहा था, परंतु मुखे एवं केवलम हास, मुख पर ही हास था। तो श्री भगवान ने इस प्रकार बोले, भगवान ने सोच लिया कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूं इसी बात में, इसी कार्य में इनके पतियों का हित है। यदि विचार किया जाए गहराई से तो भगवान ने जो कुछ कहा वो कितना समीचीन है, कितना युक्त है। क्या भगवान इसलिए अवतार लिए थे कि लोक में हल्ला हो कि ये कृष्ण ब्राह्मणों की पत्नियों को अपनी पत्नी बना लिया, इस प्रकार का प्रचार हो? भगवान तो देख रहे थे कि वे ब्राह्मण हैं, मेरी माया से मोहित हैं, परम विद्वान होते हुए भी हमको ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करें उनका यज्ञ पूरा होना चाहिए, उनकी पत्नी अपनी पत्नियों के साथ ही वे अपना यज्ञ पूरा कर पाएंगे। और बहुत बड़ा लोकापवाद भी फैलेगा कि अरे कृष्ण ऐसा अटपटांग आचरण कर रहा है, अब तक तो अपने जात की स्त्रियों से प्रेम करता था, ये सब जगह सब और ये ठीक नहीं है। भगवान तो किसी जाति के नहीं हैं, वास्तव में कृष्ण किसी जाति के नहीं हैं। अगर उनको उत्पन्न करने वाला कोई किसी जाति का होता तो इनको मान लिया जाता, लेकिन भगवान वास्तव में किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। वसुदेव जी को, नंद बाबा को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिए, लेकिन वास्तव में भगवान आदि पुरुष हैं। इन सबको ही जन्म भगवान ने दिया है, ब्रह्मा जी को जन्म दिया और ब्रह्मा जी से सब सृष्टि हुई है। तो भगवान किसी जाति के नहीं है, उनका जन्म हुआ ही नहीं है इसलिए किसी जात के नहीं है, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है। यह नहीं सोचना चाहिए किसी को कि और भगवान गोप है या जादव है, क्षत्रिय है, नहीं नहीं, या वे ब्राह्मण है या ये है वो है, ये तो सब मनुष्यों की जाति है, वो भी आत्मा की नहीं। मनुष्यों में एक जाति है कि अब आदमी से जन्म लिए हैं और उसके बाद फिर इस वंश में, उस वंश में, इस वंश में, उस वंश में, आत्मा की भी कोई जाति नहीं है, केवल देह की एक जाति है। और देह की भी जाति नहीं है, देह एक चीज से बना है सबका। ब्राह्मण का देह है माटी से, जल से, आग से, हवा से और आकाश से, पंच तत्व। ब्राह्मण का देह भी उसी से बना है और शूद्र का देह भी उसी से बना है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के देह का निर्माण इस्पात से किया गया है और शूद्र के देह का निर्माण हड्डी चाम आदि से किया गया, एक आइटम लगा है सब, एक मटेरियल शरीर बनाने में, इसलिए शरीर की कोई जाति नहीं हुई। अगर जाति देखा जाए तो एक ही जाति है, पांच भौतिक, पंचभूत से बना हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व। तो जब ब्राह्मण का शरीर भी उसी का बना हुआ है, क्षत्रिय का भी उसी चीज से बना हुआ है, और वैश्य शूद्र या किसी का भी शरीर उसी से बना हुआ है, तो शरीर की कोई जाति नहीं हुई। आकार भर है, थोड़ा अंतर माना जा सकता है कि भाई आकार में अंतर है, कोई 6 फीट का है ऊंचा है, कोई ढोला कोई कोई छोटा है, कोई बड़ा है हमको एक घटना याद आ गई। हमारे गांव के पास एक गांव है मोकरम, तो वहां से दो व्यक्ति गए थे पुलिस में भर्ती होने के लिए कि मिलिट्री में, पता नहीं मिलिट्री में शायद। दोनों छोटे छोटे शरीर वाले थे, तो लंबाई में उनको ऑफिसर ने छांट दिया, कहा कि नहीं अगर कम लंबा है तो वो मिलिट्री बनने योग्य नहीं है, लंबाई होनी चाहिए। अच्छा, भगवान के भक्ति में ये कोई जरूरी नहीं है कि लंबा हो चाहे छोटा हो, कोई कर सकता है। और सब जगह डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो लोग गए भर्ती होने के लिए तो नपाई हुई, बिना नापे ही देह करके ऑफिसर कहा एक को कहा ऐ तुम जाओ तुम खूंटी हो, देख ले छोटा है तो उसको खूंटी कहा, और फिर उसके बाद दूसरा गया तो उसको देखकर कहा तुम ढोलक हो। तो ऑफिसर देखे कि छोटे छोटे शरीर वाले हैं, तो उन्होंने कह दिया कि तुम ढोलक हो तुम खूंटी हो। तो आकार का अंतर है, कोई ढोलक है कोई खूंटी है, कोई लकीर चंद है बहुत लंबा है पतला है। कोई कुछ है कोई ऐसे है। लेकिन रा मैटेरियल जो है सबके शरीर में ये कहीं है, और इसीलिए शरीर का जो विकार है वो एक समान है ना। ब्राह्मण के शरीर से निकलने वाला विकृति मल मूत्र सब वैसा ही है जैसा शूद्र के शरीर से निकलने वाला, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं ये ब्राह्मण का मल है इसलिए ज्यादा पवित्र है। तो पवित्र होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तब कोई व्यक्ति अगर मन में ये सोचे कि हम ब्राह्मण है तो किस चीज के लिए सोच रहा है, किस चीज को ब्राह्मण कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्यों कह रहा है, जरा सोचने की बात है। मैं ब्राह्मण हूं ये किस बात से सोच रहा है, ब्राह्मण हो लेकिन सारा शरीर तुम्हारा मिला है उसी चीज से बना हुआ है और आत्मा एक जाति की है, वो है चिन्मय, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो आत्मा की दृष्टि से भी कोई जाति नहीं है और देह की दृष्टि से भी कोई जाति नहीं है, केवल एक अज्ञान है मन में कि हम ये हैं हम वो, हम देह भी नहीं है तो जाति कहां से हो सकते हैं। तो जब आत्मा की भी कोई जाति नहीं है तो फिर परमात्मा की क्या जात होगी, भगवान की क्या जात, कोई जाति नहीं। फिर भी भगवान चूंकि अवतार लिए हैं मनुष्य समाज में, तो मनुष्यों में जो व्यवस्था है जो धारणा है उसके अनुसार भगवान की भी अपनी धारणा होती है, लीला के अनुसार कि मैं गोप हूं, और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भगवान ने सोचा कि ये उचित नहीं है इनको अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करना, तो वो लौटाने की सोचने, भगवान ने समाज की व्यवस्था को कभी चैलेंज नहीं किया, इसकी रक्षा किया हमेशा, इसको मर्यादा पालन कहते। तो इस बात को ध्यान में रख करके श्री भगवान बोले। भगवान जब बोलते हैं तो यथार्थ बोलते हैं, और देश काल आदि देख करके और सब और देख करके समझ जाते, यही बोलना चाहिए यही कहना चाहिए। तो द्विज पत्नियों से श्री भगवान बोले, श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम जन्नो ददृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम ही वह। सबसे पहले महाप्रेमवती ब्राह्मण पत्नियों का भगवान स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भगवान ने कहा, शुभम एव आगमन 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 आगमनम, आप यहां आई बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम आई यहां नहीं आना चाहिए चाहे चली जाओ, ये चाहो बहुत अच्छा हुआ आप यहां आई स्वागतम, सुआगतम, सुआगतम जिसका आना अच्छा हो उसको कहते हैं स्वागतम। प्राय शब्द लिख करके रखते हैं अपने घरों पर जहां तहां, स्वागतम अच्छा वाक्य है। और भगवान ने इसको इसलिए कहा अथवा प्रश्न कर रहे हैं कि आप ठीक से आ गई ना, कोई रास्ते में बंधन तो नहीं हुआ ना, कोई रुकावट तो नहीं हुई ना। भगवान का ये प्रश्न था, मतलब पति आदि रोके होंगे तो कोई बाधा नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई ना रास्ते में, कोई दिक्कत कुछ भी, ठीक से आ गई ना, आप यहां आई बहुत अच्छा हुआ, मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा आना। आस्यताम, आसन लीजिए, बैठिए। भगवान बोल रहे हैं आस्यताम, आप आइए मेरे निकट बैठिए, आप उतना दूर से आई हैं और बर्तन लेकर के, तो खड़ी मत रहिए, बैठिए। आस्यताम का ये अर्थ है आसन लीजिए, मेरे निकट बैठिए। आश्यता मदंती के विश्रम्यताम उपवेश्यताम वा, आइए मेरे निकट विश्राम कीजिए, बैठिए। किसी भी व्यक्ति को जो सामने आया है तो उसका पहले ऐसे स्वागत करना चाहिए। लोक में भी नियम है, भगवान लोक लीला का पालन कर रहे हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आपका स्वागत है और संबोधन में क्या कहे, महाभागा, महान भाग्यवती। भगवान के कहने का आशय था कि मेरे प्रति जो इतना प्रेम करता है वास्तव में इस संसार में वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो हमसे इतना निष्कपट प्रेम कर रही हैं स्त्रियां, इसीलिए भगवान ने कहा महाभाग्यवती, इस संसार में सबसे फॉर्चुनेट लक्की व्यक्ति तुम लोग हो, महान भाग्य है तुम्हारा। भगवान उनके लिए शब्द बाहर से कुछ और बोल रहे थे, वो इस तरह से इनको डिनाई करना है, उनको स्वीकार नहीं करना है, तो महाभागा, एक तो तुम्हारा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है और उतने अच्छे अच्छे विद्वान पति मिले हुए हैं, तो तुम महाभाग्यवती। पर ये आशय नहीं है भगवान का, यहां आने का जब स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम, आपका आना बहुत अच्छा हुआ, तो यही भाव है कि मुझसे तुम्हारा इतना दृढ़ प्रेम है इसलिए तुम इस संसार में सबसे बड़ी भाग्यवती स्त्री हो, धन्य हो तुम। आश्यताम, आइए आप लोग यहां विश्राम कीजिए। करवाम किम, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, आप हमसे क्या चाहती हैं। आदिश्यताम, आप आदेश दीजिए, बताइए, संकेत कीजिए, मैं आपका क्या प्रिय करूं। यह है भगवान का शिष्टाचार। ऐसा नहीं कि भगवान देखे स्त्रियों को, स्त्रियों को दूर रखो, यहां कैसे आ गई। ऐसे लोग मिलते हैं जो सीधे कटकटा करके दौड़ पड़ते हैं स्त्रियों पर, छी मानुष छी मानुष का, इधर कहां से आ गई, इधर कहां से आ गई, इनको भगाओ, यह मत बैठने दो। भगवान बोल रहे हैं आप देखिए, भगवान अगर इस तरह स्वागत न करें तो वे स्त्रियां अपने पति का, पिता का, ससुर का, भाई का, सबका उल्लंघन करके घर छोड़ करके आई हैं, और इधर आने के बाद भगवान भी दूर दूर आने लगे, कहे जाओ, तो उनकी क्या गति होगी। भगवान को वास्तव में ऐसे ही बोलना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ करके आया है तो उसका स्वागत करना है, भगवान का अपना धर्म है, कर्तव्य है। अन्यथा वे कहे कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे पास आओ लेकिन मैं डंडा से मारूंगा, ऐसा तो भगवान नहीं कहते हैं। भगवान ही कहते हैं सर्वधर्म छोड़कर मेरे पास आओ। तो जो भगवान के पास जाएगा तो उसे जीवन में वह स्वागत मिलेगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकता दूसरों के द्वारा। तो श्री भगवान ऐसे बोल रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं सर्वस्व त्याग करके अपनी शरण में आने वालों का, कहते हैं आश्यता। सबसे पहले भगवान ने बैठने को कहा, बैठने को कहना यह एक स्वागत है, सत्कार है। आश्यता, आसन लीजिए। यद्यपि वहां कोई कुर्सी आदि नहीं था, लेकिन आसन का अर्थ है बैठना। इसका अर्थ है कि समतल मैदान रहा होगा, वहां पर घास उगा हुआ, और भगवान कहते हैं बैठिए। करवाम किम, और मैं आपका कौन काम करूं बताइए। भगवान हाथ जोड़कर नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो उनके भाव पर आघात होता है। वो श्री बलराम जी के पास बोल रहे हैं और सखाओं के बीच में है, तो भगवान तो बड़े ही ट्रिक से बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारी प्रियाएं हैं, प्रिया भाव से हमारे भजन करती हैं, और वे इनको स्वीकार भी कर चुके हैं, परंतु फिर भी लोक देखना है। लोक मतलब बलराम जी गोपों को। इसलिए सामान्य संबंध से किसी का जैसे स्वागत किया जाता है वैसे बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि कोई इनके भाव का वे तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। तिरस्कार करते तो बहुत बातें कहनी पड़ती, अब तुम घर लौट जाओ, देख लिया बान, ये वैसे जैसे गोपियों से बोले वैसे नहीं बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि इनके सामने बलराम जी हैं, तो अपने भाव कभी नहीं खोलना चाहते हैं और उनके भाव को खुलवाना नहीं चाहते, इसलिए सामान्य स्वागत की बात कर रहे हैं। करवाम किम, मैं क्या करूं, अर्थात आपको सुख देने वाला कौन सा कार्य करूं, आप किस कार्य से आए। और इसमें भगवान यह भी एक प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि मैं आपका क्या करूं, अर्थात आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, एक छिपा हुआ है। और सीधे नहीं पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आई, किस प्रयोजन से, नहीं तो बड़ा हृदय पर आघात होता। सीधा ऐसे पूछ रहे हैं भाव को छिपाकर कि आपका मैं क्या करूं, मतलब कौन प्रयोजन से आप यहां आई हैं, कृपया बताइए। और यदि मेरी शक्ति होगी तो मैं उसे पूरा करूंगा। किस भाव से आई, तो ये कुछ बोल नहीं रही थी, तो भगवान को देखने के लिए आई थी, सर्वस्व समर्पण करने के लिए। तब भगवान फिर बोले, बोलने वालों में सबसे चतुर है भगवान, विद्वान है। अच्छा अच्छा, वो नहीं बोल रही थी तो कहते अच्छा मुझे देखने आई है। हाँ, सभी लोग हमसे प्रेम करते हैं, ये बिल्कुल युक्त है। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है कि सब लोग हमको पसंद करते हैं, ऐसा वो इस तरह से बोल रहे हैं। ऐसे वो खोल दिया अपनी भगवत्ता को, लेकिन शुरू में ऐसे बोला जन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हुआ। अच्छा अच्छा, लगता है कि हमको देखने आई हैं, क्योंकि एक टक देख रही हैं हम पर, कुछ बोल नहीं रही हैं, तो देखने के लिए आई हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उपपन्नम इदम हुआ, यह बिल्कुल उपयुक्त है। हमको देखने के लिए आई तो बहुत अच्छा काम, अच्छा किया, क्योंकि दुनिया के सारे लोग हमको देखने आते हैं। आगे भगवान कहते हैं, देखना ही नहीं, हमसे अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति भी करते हैं हमसे सभी लोग। मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा ऐसा स्वभाव है कि सब लोग हमसे प्रेम करते हैं। तो श्री बलराम जी से अपने भाव को छिपा रहे, कहीं श्री बलराम जी न जान जाएं कि इसका स्पेशल भाव है इधर, और ये भी आई हैं तो प्रिया भाव से। इसलिए भगवान ने अपने दर्शन को भी, द्विज पत्नियों में जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको सर्व सामान्य साधारण श्रेणी में रख रहे हैं। हाँ, हमको सब लोग देखना चाहते हैं। सब लोग हमसे प्रेम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, देखना तो चाहते ही हैं। इसका मतलब है कि मैं तो सुंदर तो हूं ही और भक्ति भी करते हैं, और ऐसी भक्ति, अखंडा भक्ति और अहैतुकी भक्ति, निष्कामा भक्ति हमसे करते हैं। गोपियों के प्रति जब भगवान बोलेंगे तो वे कहते हैं, ठीक है वन की शोभा देख ले, अब आप लोग जाइए यहां से, कोई एकांत में खड़ा हुआ देखेगा तो निंदा करेगा, आप लोग कुलीन स्त्री हैं, आपको यहां नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, रात्रि का समय है, ये है वो है। तो भगवान तो ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते थे, इनके भाव का वो प्रतिकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रतिकार करने में ही भाव खुल जाता है। अगर मान लीजिए प्रतिकार करते, तुम लौट जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे हो जाओ, प्रतिकार करते और इनके भाव का स्वागत नहीं करते, हमसे जो तुम प्रेम कर रही हो तो यह ठीक नहीं है, तो ये वाक्य ही खोल दे रहा है। तुम जाओ अपने पति की सेवा करो, यहां केव आ गई, ये जो औपपत्य है दूसरे पुरुष से प्रेम करना, ये बड़ा नरक का द्वार है, ये है। तो मान लीजिए भगवान अगर ऐसा कहते कि दूसरे पुरुष से प्रेम करना नरक का द्वार है, तो इसका मतलब कि वो आपसे प्रेम ऐसे कर रही हो और आप भी ऐसे। भगवान अगर डिनाई करते तो कम से कम द्विज पत्नियों के भाव का पर्दाफाश तो हो ही जाता, या ये ऐसे बोलते तो वो जवाब में और बोलते कि हम मर जाएंगी फिर भी हम आपके यहां से नहीं जाएंगी, ऐसे नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगे। जैसे गोपियों ने कहा, हम यहां मर जाएंगी, विरह की आग से शरीर जला देंगे, लेकिन हम जाने वाली नहीं। तो भगवान एक विशेष परिस्थिति में है कि इनके प्रेम को जानते हुए और उनके प्रेम को पूरा स्वीकार करते हुए भी सामाजिक मर्यादा के अनुसार ऐसे बोल रहे हैं, सामान्य बात, हाँ हमसे सभी लोग प्रेम करते हैं, तो आप लोगों ने जो हमसे प्रेम किया बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई असमंजस बात नहीं है, सभी लोग हमको देखना चाहते हैं, सभी लोग हमसे प्रेम करते हैं, इस तरह से भाव का गोपन कर रहे हैं। जन्नो दिदीर्घया प्राप्ता और अभी न अस्माकम लगा करके कह रहे हैं, अच्छा हम लोगों को देखने के लिए आप लोग आई हुई हैं तो ठीक ही हुआ। अस्माकम नहकार से अस्माकम मतलब हम श्री बलराम जी या गोप सब, हम सबको देखने के लिए आई हूं, सबको देखने के लिए नहीं आई हैं। और द्विज पत्नियां श्री कृष्ण को देखने आई हैं, लेकिन भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, उनके भाव को सर्व सामान्य स्थिति में रह करके बोल रहे हैं। और असल में जितने भी कुशल लोग हैं, हिताहित विवेकी और अपने स्वार्थ को प्रयोजन को पहचानने वाले, वे लोग हमसे ही प्रेम करते हैं। तो तुम लोगों ने, आप लोगों ने जो प्रेम किया है बिल्कुल सही किया, संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग हमसे ही प्रेम करते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप पति से प्रेम कीजिए, चाहे कीजिए, वो कर रही है तो ठीक है, आप हमसे प्रेम कर रही हैं बहुत अच्छा हुआ, भगवान बताए। लेकिन फिर भी भगवान अंत में यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाइए, आप यज्ञशाला में लौट जाइए अपने पतियों के साथ, वो आपके साथ से ही यज्ञ पूरा करेंगे। यद्यपि उन लोगों ने भगवान का तिरस्कार किया था, उनको भोजन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी भगवान ब्राह्मणों के द्वारा किए गए असत व्यवहार को मन में लाए ही नहीं। शुरू में ही आपने सुना कि वे हंस रहे थे, और आज भी इतना ध्यान रख रहे हैं, अगर दूसरा आदमी होता और उससे किसी की पत्नी ऐसे प्रेम करती और पति उसका तिरस्कार करता तो कहा छोड़े 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 उसको, क्या जाओगी उसके पास, है ना। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, नहीं आप जाइए अपने पत्नियों के पास। हरीश्वरी जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, ऐसे द्विज का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों हुआ, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मणों को ही द्विज कहा जाता है। और द्विज का एक अर्थ दांत होता है, दांत दो बार जन्म लेता है, एक बार टूट जाता है बचपन का दांत दूसरा दांत जन्म लेता है, द्विज कहते हैं। तो द्विज का अर्थ है ब्राह्मण और द्विज मैंने दांत। तो भगवान ने सोचा कि आखिर हमारे दांत हैं, तो अपने दांत से अपनी जीभ कट जाती है तो क्या दांत को उखाड़ेंगे तोड़ेंगे? नहीं, ठीक है, अपनी जीभ कटी है तो अपने ही दांत से ना, मतलब इन लोगों ने अपमान किया तो हमारे ही दांत हैं, वो लोग द्विज हैं। तो यदि जिह्वा कभी कभी कट जाती है अपने दांत से तो आदमी अपना दांत तोड़ करके फेंक देता है? नहीं फेंकता है ना। कई बार जीभ कटती है, ऐसे 32 दांतों के बीच में रहती है, इसलिए कहीं इधर उधर अगर होगी, अपने ट्रैक से बाहर होगी तो कट से दांत लग जाते। लेकिन क्या करेंगे, अपने ही दांत से अपनी जीभ कटी तो उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि दांत की जरूरत है ना, दांत नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे। तो भगवान ने सोचा कि अपने दांत हैं, द्विज हैं, जो कुछ किए कोई बात नहीं। तो भगवान उन पर स्नेह ही किए, उनके पत्नियों को भेज रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कहते कहे कि वो तुम्हारे पति तो बहुत बदमाश हैं, वो लोग ठीक है जाओ लेकिन उनकी सेवा हुआ मत करना। ऐसा भी कह सकते थे, नहीं भगवान भेज रहे हैं। यह प्रसंग बाद में कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।